الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة بقرة کی چھٹی اور ساتویں نمبر آئے، اس میں اللہ رب العزت نے کافروں کے متعلق یہ فرمایا، ان آیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، آپ ان کو دین کی بات بتائیں یا نہ بتائیں، انہوں نے ایمان نہیں مانا، یعنی کہ ایکول ہیں. اگر آپ نہیں بتائیں گے تب بھی وہ ویسے ہی زندگی میں چلتے رہیں گے، اگر آپ کچھ کہیں گے تب بھی وہ ویسے چلتے رہیں گے، تو کوئی اثر نہیں ہوگا. اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی؟ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں کے اوپر، قلوب کے اوپر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پڑتا ہے. اب انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، وہ بڑی سے بڑی نشانی بھی دیکھ لیں گے وہ نہیں مانیں گے، وہ بڑی سے بڑی بات بھی سنیں گے نہیں مانیں گے، آپ کو ایز اے نبی دیکھ لیں پھر بھی نہیں مانیں گے. باقی عام انسان کی بات تو چھوڑیں، کوئی ولی ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی اور ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بھی نہیں مانیں گے. تو یہ بات بتا دی تھی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ کو دکھ ہوتا تھا کہ میں بتاتا ہوں بات، میں محنت کرتا ہوں، یہ لوگ بات نہیں مانتے. ایک تسلی ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اور کیوں ہوگا؟ کیونکہ میں ایسا چاہتا ہوں. اب یہاں پہ پھر ہم نے کوشچن ارائز کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں تو پھر ان کا کیا قصور؟ جب اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر دیا، اٹل فیصلہ کر دیا، پکا فیصلہ کر دیا، اب کوئی اس کو بدلنے والا نہیں، تو پھر ان کا کیا قصور؟ تو تقدیر کے موضوع پہ ہم نے بحث اور بات شروع کی تھی، اور لاسٹ سیٹنگ کے اندر کچھ احادیث کو ذکر کر کے تقدیر کا کیا کنسیپٹ ہے، کہ احادیث میں ذکر ہے کہ انسانوں کی تقدیر اور فیصلے انسانیت کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے کر دیے گئے. کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون کیا کرے گا، یہ سب فیصلے ہو چکے ہیں. اور جب انسان پیدا ہو رہا ہوتا ہے 4 مہینے کی وہ جب فیٹل لائف پہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایک فرشتہ فیصلے کرتا ہے مرے گا کب، کہاں مرے گا، اس کی زندگی کیا ہے، اس کا رسک کیا ہے، یہ سارے فیصلے کر دیتا ہے اور وہ لکھ دیے جاتے ہیں. تو جب انسانوں کے فیصلے ہو چکے، ایون جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا، تو پھر دنیا کا یہ سارا نظام کیا؟ یہ ہے کوشچن کہ دنیا کا نظام کیا ہے اگر یہ سب فیصلے ہو چکے. تو تقدیر کو سمجھنے کے لیے اس سارے مسئلے کو تقدیر کہتے ہیں. کہ یہاں سے حدیث پاک میں کہہ دیا کہ ایک شخص قابل ہے، ایک شخص شارپ ہے مینٹلی، ایک شخص ڈل ہے مینٹلی، یہ بھی تقدیر ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا یہ شارپ پیدا کرو، اس کو ڈل پیدا کرو، اس نے واضح. اور ایون کہ انسان جو اسٹیپ دنیا میں لے رہے ہیں کہ کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو دوائی کھاتا ہے، تو صحابہ نے پوچھا کیا یہ تقدیر بدل دیتی ہے ہماری دوائی، کہ میں دوائی کھاتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہوں؟ تو اللہ نے تو فیصلہ کیا تھا بیمار ہو، دوائی کھا کے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ٹھیک ہوں تو اللہ کی تقدیر بدل گئی؟ کہا نہیں، وہ دوائی کھانا بھی تقدیر ہے. یہ اس طرح فرمایا. تو اس ساری بیک گراؤنڈ پہ ہم نے تقدیر پہ بات شروع کی تھی، اور تقدیر پہ ہم نے جو لاسٹ ٹائم بات کی وہ 4 ہیڈنگز کے اندر تھی. اور وہ 4 ہیڈنگز کیا تھیں؟ کہ پہلی چیز یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے. اس میں یہ عیب نقص بھی شامل ہے کہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے پاک، یعنی کہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز نہیں. ہم نے یہ ڈویژن کی ہوئی ہے اپنے حساب سے کہ یہ پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر ہے، کیونکہ میں جو وقت گزار چکا ہوتا ہوں وہ میرا پاسٹ ہے، جو میں گزار رہا ہوتا ہوں میرا پریزنٹ ہے، اور جو گزارنا ہے وہ میرا فیوچر. अल्लाह के यहाँ ये कोई रवैया नहीं है। अल्लाह ताला एक शॉट में एक एक इरादे के अंदर ये सब देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जब से टाइम शुरू हुआ और जब तक टाइम है जो मे बी इंफिनिट ही है, तो वहां तक अल्लाह ताला देख रहे हैं कि क्या होगा, क्या हो रहा है और क्या होने वाला। तो ये हमने डिस्कस किया था। और दूसरी बात ये इसी के अंडर ये भी डिस्कस की थी कि जिस तरह एग्जाम्पल दी थी टीचर की प्रिडिक्ट कर लेता है स्टूडेंट के बारे में कि कौन लाइक स्टूडेंट है कौन लाइक नहीं है, कौन पास होगा कौन फेल होगा, और अगर वो प्रिडिक्ट करके कहीं पे नोट डाउन कर दे कि फलां स्टूडेंट पास होगा फलां फेल होगा, तो अगर एक्चुअली ऐसा हो जाए यानी रिजल्ट आए एक्चुअली वो स्टूडेंट पास या फेल हो, अब वो स्टूडेंट ब्लेम ही कर सकता है टीचर को, तो टीचर आपने क्यों लिखा था कि आप मैं पास होंगे या फेल होगा, यानी कि आपने क्यों नोट डाउन किया था, मैं आपके नोट डाउन करने की वजह से पास या फेल हूँ, पास वाले कहे आपने नोट किया था मैं इसलिए पास हो गया हूँ, और फेल वाले कहे आपने पहले प्रिडिक्ट करके लिख दिया था इसलिए मैं फेल हो गया हूँ। तो हर अकल वाला कहेगा ऐसी तो कोई बात नहीं, इस बात पर कोई लिंक नहीं, टीचर का लिखना एक्सपीरियंस के बेसिस पे था, उसका पास फेल होना उसकी अपनी एफर्ट के बेसिस पे। तो ये बात इसलिए जिक्र की थी कि इसी तरह अल्लाह ताला ने अगर पहले से लिख दिया है कि फलां जन्नती है फलां जहन्नमी है फलां नेक होगा फलां बद होगा, तो ये इस पे इंसान अल्लाह ताला को नहीं ब्लेम कर सकता कि अल्लाह ताला आपने क्यों लिखा इसीलिए मैं ऐसा हूं, नहीं हमने ऐसा होना था इसलिए अल्लाह ताला ने पहले लिख दिया। ये बात इंपॉर्टेंट थी तकरीर के मौके पर, क्योंकि ये बात कई बार समझ में आती कि जो लिखा गया वो हो रहा है या जो हो रहा है वो लिखा गया। तो ये असल में एक ही बात के दो पहलू हैं, एक इस तरफ खड़े होकर देख रहे हैं या इस तरफ खड़े होकर देख रहे हैं। अगर शुरू में जाके देख लें तो ये नजर आएगा कि जो होना है अल्लाह ने अपने इल्म गैब से उसको लिख दिया, और अगर हम अब की सिनेरियो में देखें और पीछे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिखा था वही हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, अल्लाह का इल्म गलती नहीं करता खता नहीं करता उसमें कोई एरर नहीं है, तो एक्चुअली दोनों एक ही चीज है, जो लिखा है वही हो रहा है जो होना था वही लिखा है। ये बात एक इंपॉर्टेंट है समझ, ये कई बार समझ नहीं आती कि ये कैसे, तो कई हदीस कई रवायात में मिलता है कि जो होना था वो लिख रहा है, कहीं पे होता है कि जो लिखा था वही हो रहा है, तो दोनों एक ही बात। तो ये पॉइंट था। फिर दूसरा जो हेडिंग जिक्र हुई थी, दूसरी जो पॉइंट जिक्र हुआ था वो ये कि इसी तरह अल्लाह इंसान की मर्जी दो विल, क्वेश्चन ये है कि क्या इंसान की कोई विल है, तो उसका आंसर यह बिल्कुल है इंसान की विल। अच्छा अल्लाह ताला की विल है बिल्कुल है, तो अब ये दोनों विल कैसे पैरेलल चल रही है दुनिया के अंदर, दोनों मर्जियां कैसे पैरेलल चल रही, तो उसको एक मिसाल से समझाया था, जैसे एक बच्चा खेल रहा हो तो उसकी एक विल होती है एक बाप की विल होती है, अब वो अगर कमरे में खेल रहा है तो कोई पूछे बाप से आपकी मर्जी से खेल रहा है, तो बाप कहेगा बिल्कुल मेरी विल है मैं खेल रहा हूँ खेलने दे रहा हूँ, अगर बच्चे से पूछा अगर बाप से पूछा बच्चा अपनी विल से खेल रहा है तो कहेगा हाँ वो उसकी भी विल है वो भी खेल रहा है, लेकिन अगर बाप उसको रोक दे किसी वजह से मिसाल इसी आग जल रही है उसकी तरफ बढ़ता है तो वो रोक देता है, अब पूछा जाए किसकी विल है, कहेगा बाप कहेगा मेरी विल थी रुके उसकी विल थी चले, विल यानी बजाहिर किसकी पूरी हो रही है मेरी क्यों मैंने उसको पकड़ लिया मैं उसे चलने दे रहा। इसी तरह अल्लाह ताला की भी विल है इंसान की भी विल है, अब दोनों विल अगर पैरेलल हो वो दोनों विल यूनिट एक्शन हो एक ही हो तो वो काम होता हम नजर देखते हैं, यानी हम जिंदगी में जो कुछ कर रहे हैं वो मेरी विल भी है अल्लाह ताला की विल भी, मैं बोल रहा हूं मेरी विल भी है अल्लाह ताला की भी है इसलिए मैं बोल, अब अल्लाह ताला के विल बदल दें अपनी मंशा बदल दें अपनी चाहत बदल दें ख्वाहिश बदल दें कि नहीं इसको नहीं ये काम करने दे रहा, तो मैं जितनी मर्जी एफर्ट कर लूं मैं वो काम नहीं कर सकता, हम उस वक्त फील करते हैं कि मैं चाहता भी था ये हो मैं चाहता भी हूँ ये हो, वो होते ही क्योंकि अब मेरी विल तो है लेकिन अल्लाह ताला की इरादा और मर्जी और मंशा कुछ और है, पूरी उसकी होगी क्योंकि ताकत उसकी है कुदरत उसकी है मैं उसके अंदर हूँ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और इसके तहत हमने एक टर्म समझी थी वो थी फाइल हकीकी। फाइल हकीकी का मतलब है फाइल का मतलब जो काम कर रहा होता है जो डूअर होता है जो काम कर रहा है, और हकीकी का मतलब हकीकत में जो काम कर रहा है, तो हकीकत में अल्लाह ताला काम कर रहे हैं, फाइल करने वाली रात अल्लाह की हर चीज, दुनिया में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है मैं कुछ कर रहा हूँ या कुछ दुनिया के अंदर हो रहा है हवाओं का चलना, ये बादलों का आना, ये बारिश का बरसना, पत्तों का हिलना, पत्तों का गिरना, चींटियों का, जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह ताला कर रहे हैं, फाइल है उसके, फाजुरी वो जो चाहता है वो करता है, तो अल्लाह ताला उसको कर रहे होते हैं। और अगले की इंसानों में हम देखते हैं कि विल है, जानवरों में एक विल होती है, तो जब अल्लाह ताला और उनकी विल मिलती है वो वैसे होता है, जब अल्लाह ताला की विल बदलती है होता हुआ है जो अल्लाह ताला चाहता है। एक को स्ट्रोक हो, पेशेंट बोलना चाहता है, कोशिश भी कर रहा होता है मुंह खोलने की, लेकिन नहीं कर सकता, अल्लाह ताला की विल कुछ और है, उसकी विल कुछ और है। तो फाइल हकीकत का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कि हर चीज की करने वाली रात अल्लाह की। और तीसरी हेडिंग, और ये सेपरेट हेडिंग में हम डिस्कस करके आखिर मर्ज करना है, एक्चुअली तकदीर का कॉन्सेप्ट अगर ये सेपरेट ना किया जाए तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए पहले सेपरेट किया और आखिर में इनको मर्ज करेंगे और फिर एक फॉर्मेट बनेगा जो कि उस अहदीस को समझने में मदद देगा और कुरान पाक की आयात को समझने में मदद देगा जो तकदीर के हवाले से। तो तीसरा जो हेडिंग है वो है जबर इख्तियार, कि इंसान मजबूर है या उसे कोई इख्तियार भी है, वो कुछ उसे अल्लाह ताला ने इख्तियार दिए कुछ करने का, क्योंकि पहले वाली बात से ऐसे लगता है कि इंसान मजबूर है, अल्लाह ताला जो कह चाहते हैं वो करता है, जो नहीं चाहता वो नहीं करता, अल्लाह ताला चाहते हैं ये नेकी करे वो नेकी करता है, अल्लाह ताला चाहते हैं गुनाह करे गुनाह करता है, तो गुनाह एक आदत, गुनाह के वक्त ये कह सकता है फायदे हकीकी अल्लाह है, अल्लाह ताला मुझसे गुनाह करा रहे, मैं तो नहीं कर रहा, आप खुद कह रहे हैं फायदे हकीकी अल्लाह है, तो अल्लाह ताला मुझसे गुनाह करा रहे। तो यहाँ पे फिर अगली चीज समझनी चाहिए कि इंसान पार्शली मुख्तार है, पार्शली मजबूर है, वो ये नहीं कह सकता मैं पूरे तौर पे मजबूर हूँ, वो ये भी नहीं कह सकता मैं पूरे तौर पे मुख्तार हूँ, मेरे प्यार है, बल्कि पार्शियल है दोनों चीजें। क्या मतलब कि हम अपनी जिंदगी में खुद एनालिसिस करें, हम ये समझ जाएंगे कि हम जिंदगी के कुछ कामों में मजबूर फील करते हैं कि मैं चाहता हूँ ये हो ये होता नहीं, भाई एग्जाम्पल एक गरीब शख्स चाहता है मैं अमीर हो जाऊँ लेकिन उसकी विल नहीं पूरी होती, एक बीमार शख्स चाहता है मैं सेहतमंद हो जाऊँ उसकी विल नहीं पूरी हो रही, तो वहां पे वो मजबूत फील करता है। लेकिन बहुत सारे जिंदगी के पहलू ऐसे हैं जहाँ वो जो चाहता है वो कर सकता है, अब मैं चाहूँ चाह रहा हूँ तो बोल रहा हूँ, मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, यानी कि मेरे पास एक विल होती है, मैं बाहर जाऊँ गाइड गाइड करूँ, मैं जो मर्जी करूँ, तो मैं फील करता हूँ वहां पे तो मेरा इख्तियार है, लेकिन कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिसमें मजबूर हूँ। तो ऐसे ही है, अल्लाह ताला ने इंसान को कुछ जगह इख्तियार दिया है, कुछ जगह मजबूर रखा है। क्या मतलब कि इख्तियार देने से क्या मतलब है, अल्लाह ताला जब कोई इंसान अपने इख्तियार से भी काम करता है, विल से भी काम करता है, तो कुछ जगहों पे अल्लाह ताला अपनी विल से इंटरफेयर नहीं करता, बल्कि उसकी विल के मुताबिक अपनी विल बना देते, करते विल फिर भी होती है अल्लाह की, विल को अल्लाह ताला की रूल आउट नहीं किया जा सकता, फायदे हकीकी वही होता है, लेकिन वो देखते इसकी विल ये है ये करना चाहता है इसको करने दो, चल मैं भी इस पर ये करने देता हूँ, जहां वो चाहते मतलब फॉर एग्जाम्पल वो नेकी करना चाह रहे हैं ठीक है मैं उसको अपॉर्चुनिटीज देता हूँ उसको ताकत देता हूँ उसको निकल पड़ेगा, यही हदायत होती है, एक अंदर सर्च में निकलता है अल्लाह उसको हेल्प कर, एक शख्स कहते नहीं मैंने गुनाह करना है अपनी विल से सब कुछ जानते हो तो अल्लाह ताला उसको वहां फैसिलिटेट करते करो फाइनल क्योंकि फिर भी अल्लाह होते हैं लेकिन इसकी विल की वजह से होते हैं। और इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल ये दी थी कि एक शख्स हो उसके सामने दो चीजें पड़ी हो, फॉर एग्जाम्पल एक गन पर की ढेर पड़ा है, एक किसी खुशबू का फूलों का फॉर एग्जाम्पल, अब कोई सामने वो भारी है वो उठा नहीं सकता, कोई ताकतवर आदमी आके कहे आपको हेल्प चाहिए मेरी देख मेरी हेल्प करते हैं तो क्या रखूँ आपके ऊपर क्या पकड़ाऊँ, वो कहेंगे गन पकड़ा दे, ठीक है वो उठा के पकड़ा दे, अब वो जब गुजरेगा कहीं से तो ब्लेम करने वाले कहेंगे तुमने क्या उठाया, वो कहते मैंने तो नहीं उठाया उसने मेरे पकड़ाया, नहीं तुमने कहा तो उसने पकड़ाया ना, वो तो सिर्फ हेल्पर था उस पर क्यों अपना ब्लेम डाल रहे हो, तुम कैरी करने वाले और विल तो तुम्हारी थी। तो इसी तरह इंसान को दोनों ऑप्शन है, कुरान पाक ने वादे कहा कि जिसका चाहे दिल करे कुफर करे जिसका दिल चाहे ईमान लाए, इस तरह के अल्फाज पवन शाह फलजक्ट जिसका दिल चाहता है कुफर करे और जिस तरह चाहते हैं मान मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, ये तुम्हारी विल होगी और इस विल जो तुम चाहोगे मैं फैसिलिटेट कर दूंगा, गुनाह और कुफर में जाना ठीक है, मैं चलने दूंगा, जाओ, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा इधर से इधर, लेकिन मेरी रहमत है, मैं अपने अंबिया भेजूंगा, अपने औलिया भेजूंगा, बुलाने वाले भेजूंगा, वो तुम्हें जगाते रहेंगे, कोई मुसीबत भेज दूंगा वो तुम्हें जगाएगी, लेकिन ये नहीं होगा कि कोई हाथ पकड़ के खींच के तुम्हें दूसरे लाइन से लगाएगा, ऐसा नहीं होगा, करना तुम्हें ही पड़ेगा। और नेकी वाला कभी कोई जबरदस्ती गुनाह की तरफ नहीं, वो खुद अगर जाएगा तो जाएगा। इसलिए उस विल को यूज करने के हवाले से इंसान और आखिर में जवाब दे होगा, या दूसरे लफ्जों में अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लें कि या मजबूर है या मुख्तार है, तो अब जहां उसको इख्तियार दिया अल्लाह ने और उसके विल के मुताबिक काम किए, इसके बारे में अल्लाह क्वेश्चन करेंगे, तुमने ये क्यों किया, तुमने ये विल तुम्हारी क्यों थी। जहां मजबूर था वहां अल्लाह का कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई क्वेश्चन नहीं बीमार तो होगा बीमार क्यों हुए, कोई क्वेश्चन गरीब तो नहीं होगा गरीब क्यों हुए, तुमने एफर्ट की मेरी मर्जी थी मैंने नहीं तुम्हें ऊपर जाने दिया। जहां किसी से नहीं पूछा जाएगा तुम अपाहज क्यों थे, तुम नाबीना क्यों थे, ये सारी सारी चीजों में इंसान मजबूर है, तुम इस घर में क्यों पैदा हुआ है, तुम्हारे वालदैन ये क्यों थे, तुम्हारे बहन भाई ये क्यों थे, तुम्हारे रिश्तेदार ये क्यों थे, ये सारे मजबूर है, हमारी कोई मिल नहीं होती, तुम इस वक्त क्यों मरे, यहाँ क्यों मरे, तुम्हारी इतनी जिंदगी क्यों थी, ये सारे वो फैसले जिसमें इंसान का कोई इख्तियार नहीं। अब जहां इख्तियार नहीं, अल्लाह ताला क्वेश्चन ही नहीं करेगा, आपसे उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा इनके बारे में। हाँ, जहां उसने अपने गलत से फैसला किया, उसके पास मल्टीपल ऑप्शन थी, ये भी कर सकता ये भी ये भी, उसने कहा नहीं ये मैंने ये करना, अल्लाह ताला ने करने दिया। अब वहां पूछा जाएगा क्यों किया, अब उसको आंसर अभी से तैयार करना, अल्लाह ताला नेकी वे इसलिए चला क्योंकि आपने कहा था ठीक है पास, गुनाह भी इसलिए चला क्योंकि फाइल थी कंट्रोल नहीं हुई, और फिर पूछा जाएगा क्यों किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि क्यों अल्लाह ताला पूछेंगे सिर्फ जहां इख्तियार, लेकिन पीछे अल्लाह की दात है जो काम करवा रही होती है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फाइल हकीकी अल्लाह है, ये हमारा ईमान है कि हर काम के पीछे अल्लाह ताला होते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया कि फिर गुनाह उसको क्यों नहीं ब्लेम किया जाता अल्लाह ताला को, इसलिए क्योंकि वो उस विल हमारी होती है, इसलिए अल्लाह ताला को ब्लेम नहीं किया जाता। और तीसरा भी उसके बाद जो हेडिंग थी वो थी कि ये सब क्यों और कैसे होता है, मतलब कैसे फैसला होता है कि इसको इस घर में पैदा किया जाए, ये मुसलमान घर में पैदा हो ये काफिर घर में पैदा हो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन होता है कुफार का क्या कसूर कि वो काफिर घर में पैदा हो गए, मुसलमान का क्या कमाल कि मुसलमान घर में पैदा हो गए। तो ये फैसले कि क्या कब कैसे करना है और क्यों करना है, इसको क्यों ऐसे शुरू से मुश्किल में डाल दिया काफिर घर में पैदा करके, या मुसलमान या काफिर जो भी है जिंदगी में उसको मुसीबत आ गई, अच्छा भला था कोई एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हो गया, अपाहज हो गया, नाबीना हो गया, क्यों हुआ, किसी ने शादी करने की एफर्ट की शादी नहीं हो रही, शादी होगी औलाद नहीं हो रही, औलाद हो रही है बेटे नहीं हो रहे, जो भी जिंदगी के हम मसाइल और मुश्किल और गम देख लें, तो अब सवाल ये पैदा होता है अल्लाह ताला कैसे फैसला करते हैं इसको देना है, इस वक्त देना है, इसी को क्यों देना, उसको क्यों नहीं देना, ये फैसले कैसे होते। तो ये इसका आंसर किया था कि इसके भी दो दो पहलू हैं, एक वो जो हम समझ सकते हैं और एक वो जो हम नहीं समझ सकते। समझने वाला पहलू ये है कि फॉर एग्जांपल कि काफिर से एक क्वेश्चन का आंसर क्या है कि काफिर को अल्लाह जबरदस्ती क्यों मुसलमान करते, देख रहे हैं वो जहन्नुम में जा रहे हैं और अल्लाह ताला रहीम है, उनको क्यों नहीं मुसलमान करते, उनके कंट्रोल में। तो आंसर सिंपल है कि अल्लाह ताला ने सामने रख दी है बात, वाजे कर दी है, अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई ही आजमाइश के लिए, अगर इस तरह शुरू कर दे अल्लाह ताला के इसको जबरदस्ती मुसलमान करो, जबरदस्ती इसको नेकी पे लाओ, तो फिर ही इम्तहान कहेगा, यानी फिर इम्तहान कहा ही नहीं जाएगा, कोई इम्तहान दुनिया का ऐसा नहीं होता, वहां पे ऐसे ही होता है, ये कोर्स है सिलेबस है पढ़ो और क्वेश्चन आएंगे आंसर करना। अब वहां पे कोई ये नहीं कहता कि जी मुझे हेल्प नहीं की जा रही एग्जाम में, मुझे कोई बताएगा आंसर क्या करना है, वो तो पहले से आपको बता दिया गया आपको सिलेबस के ये है, वहां तो कोई हेल्प नहीं कर, इवन इन्विजिलेटर देख भी रहा हो गलत कर रहा है, कोई नहीं बताएगा उसको, कहते करने दो ये इम्तहान, तो अल्लाह ताला देख भी रहे गलत कर रहा है, नहीं अल्लाह ताला रोकेंगे डायरेक्टली। तो इसी तरह दुनिया के अंदर पहली चीज के इम्तहान है, तो एक तो ये कि यहाँ पे इस तरह नहीं किया जाएगा कि जबरदस्ती की जाए नेकी और गुनाह के हवाले से, दूसरी चीज यहाँ पे ये भी नहीं होगा कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कर दे क्वेश्चन. एक्चुअली क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन क्वेश्चन बनाने वाले का ऑब्जेक्शन होता है. क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन, क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन नहीं, क्वेश्चन बनाने वाले पे. आपको क्वेश्चन नहीं बनाना आता, आप मेरे लेवल पर क्वेश्चन नहीं बनाया, आपने गलत क्वेश्चन बना दिया. तो इसी तरह हालात पे अगर कोई ऑब्जेक्ट करते कि मेरे साथ क्यों हो रहा है या क्या हो रहा है या उसके साथ क्यों हो रहा है, तो एक्चुअली अल्लाह ताला जिसने क्वेश्चन दिया उसको कि आंसर करो इसको, उस पर ऑब्जेक्शन है. अल्लाह ताला ने क्यों दे दिया. तो समझने वाली पहला पहलू ये है कि इस दुनिया के अंदर ये आजमाइश है, तो ऐसे ही होगा कि अल्लाह ताला करने देंगे कामों को. और दूसरी बात ये जो समझ आती है वो ये कि अल्लाह ताला की ज़ात रहीम है, यानी कि तीन ऑप्शन हैं अल्लाह ताला को से निस्बत की जा सकती है तीन चीज़ों की, ज़ुल्म, अदब और रहम. तीन ऑप्शन है. अब अगर देखा जाए अल्लाह ताला नऊज़ु बिल्लाह ज़ुल्म करते हैं इंसानों पे, ईद को ऐसे करते हैं, तो अल्लाह ताला खुद कुरान में कहते हैं मैं ज़ुल्म नहीं करता, मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, ज़ुल्म नहीं है मेरी डिक्शन में, जो ज़ुल्म करेगा मैं उसे पकड़ूंगा. तो ये तो रूल आउट हो. अब अदल और रहम रह गया. अब अदल अल्लाह ताला कभी कभी करते हैं, रहम कुरान पाक में कहते हैं मैं रहमान हूँ तो रहम से ही देता हूँ. अदल में कभी कभी करता हूँ, जैसे जहन्नुम में जिसको डालेंगे अल्लाह वो अदल होगा उसके अमाल की वजह से, और जन्नत में जिसको डालेंगे रहम होगा उसके अमाल की वजह से. इसी तरह दुनिया में किसी को अजाब आता है तो अल्लाह तो उसे अदल का फैसला करते हैं उसकी डीड की वजह से. और अगर हम नहीं एक सुकून की जिंदगी गुजार रहे तो ये अल्लाह का रहम है, अल्लाह ताला माफ करते जा रहे हैं, ठीक है मैं मुहलत देता हूँ. तो रहम और अदल दो ऑप्शन है, जुल्म की कोई ऑप्शन नहीं. तो ये हमें बात समझ में आती है कि अल्लाह ताला जुल्म नहीं करते. दूसरी चीज ये समझ में आती है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद कहा कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला नहीं तकलीफ देते किसी को, उसकी अगर देते हैं तो उसकी वुसअत उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक देते. तो इंसान को अगर कोई अल्लाह ताला ने एक मुश्किल में डाला है या ऐसी चीज में जिसको जिसकी यानी उसकी विल नहीं है, उसकी पसंद नहीं है, तो अगर कोई ऐसे हालात से गुजर रहा है तो ये अल्लाह ताला ने डिक्लेयर कर दिया कि इसमें कैपेबिलिटी है तो मैं इसको दे रहा हूं. यानी कि अल्लाह ताला हर स्टूडेंट की हर इंसान की कैपेबिलिटी को जानते हैं और उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक अल्लाह ताला उसका आंसर करता है, उसको क्वेश्चन देता है. उसका काम है आंसर करना. ऑब्जेक्शन क्वेश्चन में कोई आंसर नहीं है और ना कोई इसकी चलेगा. कर भी देगा ऑब्जेक्शन, उसकी क्वेश्चन ही चेंज होगा, हालात नहीं बदलेंगे उसके कहने पे कि क्यों आ गए. क्वेश्चन बस आ चुके हैं और हर इंसान को क्वेश्चन पेपर फर्क है. मैं ये नहीं कह सकता वो उसके ये क्यों आया, उसके ये क्यों राहत है, मुझे क्यों ये राहत है, उसको क्यों ये मुसीबत है, क्यों आई उस पर नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता. हाँ ठीक है, एक को क्वेश्चन पेपर कुछ है, एक में मुश्किल है, एक में आसानी है, एक में एक गम है, दूसरे में दूसरा गम. तो ये तो बात अंडरस्टूड है, ये सारी बात. और तीसरी चीज जो लास्ट टाइम यहां पे बात को रोका था वो ये थी कि ये समझना कि अल्लाह ताला क्यों और कैसे करते हैं, ये इंसानी जिसात, इंसानी जहन, इंसानी कैपेबिलिटी से बाहर. ये बात समझना बहुत अहम है. अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए तो दीन का खुलासा हमें समझना आ जाए. एक्चुअली इंसान इस गलतफहमी में है कि मैं बहुत शार्प माइंडेड हूं, मैं बहुत कैपेबल हूँ, मैं बहुत इल्म वाला हूँ, इसलिए मेरी कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती कि मैं समझ सका हूं. अगर होगी तो उसमें ऑब्जेक्ट करता है. अब कुरान पाक अल्लाह का इल्म, इंसानी एक्सपीरियंस, इंसानी जहन से मांग रहा है. ये बात इंसान एक्सेप्ट नहीं करता, और एक्सेप्ट नहीं करता तो ऑब्जेक्ट करता. इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अल्लाह ताला का इल्म, इंसानी ज़हन, सोच, उसके तजर्बे, हर चीज से उससे मावरा है, उससे बुलंद है. यानी कि इंसान की उसकी अगर रेंज ये है तो उसकी रेंज से शुरू होना ही बाहर है. तो ये कैसे उसको समझ सकते, फॉर एग्जाम्पल, इसकी समझने के लिए कोई समझाई नहीं जा सकती किसी तौर पर, लेकिन समझाने के लिए एक झलक दिखाई जा सकती. मैं यहाँ पे कोई भी डिसीजन करूँ मुझे कहा जाए कि आप ये फैसला करें, कोई भी जल्दी का, अब मैं उसके बारे में डाटा कलेक्ट करूँगा, तो पूछूंगा अपना एक्सपीरियंस, किताबें पढ़ लूंगा, एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट से पूछ लूंगा कि क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन है मुझे दे, ये सारा कुछ कर करके फिर मैं सोचूंगा, एनालिसिस करूंगा और जो बेस्ट ऑप्शन होगी मैं उसको ले लूंगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि मेरा डेटा था क्या, ये चंद लोगों के तजर्बे, चंद लोगों के एक्सपीरियंस जो खुद इंसान मानते चेंज हो रहा है। साइंस क्या है, वो एक्सपीरियंस चेंज होते जा रहे हैं, नई रिसर्चेस, नई डेवलपमेंट, वो बेसिस है इंसान के पास डिसीजंस के। तो मतलब ये कि इंसानी डिसीजंस भी खता करते हैं, उसका इल्म भी खता करता है, उसमें एरर के चांसेस हैं, एरर फ्री नहीं है उसका, ये एक्सेप्ट करना चाहिए। अब हमारे पास ये सारा डाटा, अब अल्लाह ताला की के पास क्या है, अल्लाह ताला के पास इंसान का पूरा निजाम, टाइम एक तो पहली बात, फिर टाइम जो पहली बात की थी पूरा टाइम अल्लाह के सामने, हमारे पास टाइम नहीं है, मुझे पास का पता चल रहा है, फ्यूचर का मुझे कुछ पता नहीं, मैं जो डिसीजन ले रहा हूं उसका आउटकम 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद क्या आएगा मुझे कुछ पता नहीं। मैं अपने एक्सपीरियंस से निकाह करता हूँ, शादी करता हूँ, आगे जाके क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं, औलाद होगी नहीं होगी, औलाद नेक होगी बद होगी, औलाद मेरी मानेगी नहीं मानेगी, आगे मेरी बीवी से बनेगी नहीं बनेगी, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने चंद इंफॉर्मेशन पे, डेटा पे मैंने डिसीजन ले लिया, अपनी जिंदगी का डिसीजन ले लिया। अब अल्लाह ताला का टाइम बिल्कुल आखिर तक पता है कि ये क्या 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 होगा, सारा अल्लाह ताला के सामने क्लियर है, एक चीज। दूसरी चीज मैं हूं, फिर इसी तरह मेरी आगे जो नस्ल होगी वो टाइम के अंदर जो आ रही वो भी अल्लाह के साथ, मुझसे पहले वाले लोग जिनको मुझे नहीं पता कौन है वो मेरे सामने, एक और चीज। फिर तीसरी चीज अल्लाह ताला के सामने निजाम है, फरिश्ते अल्लाह के सामने, अल्लाह ताला के सामने रहमत का निजाम है, अल्लाह के सामने अजाब के, अल्लाह ने रहम करना है, अल्लाह ताला ने अजाब देना है, अदल करना है, अल्लाह ताला ने जो जुल्म कर रहा है उसका बदला लेना है, अल्लाह ताला ने लोगों की नेकियों पे आउटकम लाने हैं, लोगों के गुनाहों पे आउटकम लाने हैं, ये सारे निजाम। फिर जितने दुनिया में जानदार हैं उनके निजाम, ये जितने दरख्त हैं, पौधे हैं, जितने कीड़े मकौड़े हैं, मछलियां हैं, जो कुछ है वो सब अल्लाह ताला ने उनको कंट्रोल करना है, उनको रिस्क है। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स निजाम फरिश्तों का अपना है। अब अल्लाह ताला ने, सिंपल सी बात है, अगर मुझसे, मुझे सामने आ जाए एक दो शख्स, एक कहकर के दुआ कर दें कि बारिश ना हो, कि मेरी बस्ताएं बाहर चीजें पड़ी हैं, ये है वो, ठीक है मैं दुआ कर देता हूँ, इस पर अल्लाह ताला मसला है, बारिश ना हो। दूसरा आगे कहता है दुआ करें बारिश हो, मेरी फसल, मेरे बीज बोए, दुआ करते हैं बारिश हो जाए, मैं दुआ कर दूंगा। लेकिन मेरी समय से बारिश होना क्या चाहिए, बारिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब अल्लाह ताला उस पर जो फैसले करेंगे, सारी दुनिया के अंदर इधर का बारिश देनी है, इधर का नहीं देनी, यहाँ पे उसकी जानवरों को बारिश की जरूरत है, यहाँ पे बारिश भी तो नुकसान होगा इंसानों का भी जानवरों का भी। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतना कॉम्प्लेक्स निजाम कि उसके इल्म में सारा कुछ होता है, वो फैसले करता है उस इल्म के। अब कैसे एक इंसान जो इतना सा, जिसको घर के मसले जिससे हैंडल नहीं होते, वो इंटरफेयर करे अल्लाह ताला के सारे निजाम में, कि अल्लाह ताला कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो समझना चाहिए कि ये मेरी उस, यानी कि मैं कैपेबल ही नहीं हूँ इसका कि मैं उसको समझ सकूँ। पार्शली कोई नुकता शायद मुझे समझ में आ जाए, लेकिन सारी चीज़ें मैं कैसे समझ सकता, ये चीज बैकग्राउंड है इस चीज को डेवलप करने के लिए कि जब इंसान हार मारता है इल्म के लिहाज से अल्लाह का, सुबहानक ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना, फरिश्तों ने हार मानी थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का कहा अल्लाह ताला ने फरिश्तों को, तो हैरान थे क्यों सजदा, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कुछ नाम बताए थे चीजों के, अल्लाह ने सिखा दिए, और फरिश्तों को कहा कि अब तुम बताओ चीजों के नाम, अगर तुम्हें है इस चीज में क्यों ने खलीफा बनाया जा रहा है तो तुम बता दो। उन्होंने आगे ये जुमला जानता ने कुरान में जिक्र किया, सुबहानक ला इल्मा लना, अल्लाह पाक है हमें कोई इल्म नहीं है, इल्ला मा 'अल्लमतना, जितना हमने बता दिया वही हमें पता है। अब फरिश्तों का इल्म इंसानी इल्म से कहीं जा रहा है, अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म दिया, तो इंसान बहुत महदूद है, लेकिन उस महदूद हल्के में वो अपने आप को बहुत, मसला यह है कि जिसने छोटी सी चीज देखी हो तो वो समझेगा यही सब कुछ है। जो उससे बाहर निकला हो वो समझ सकता है कि इसके बाहर भी बहुत कुछ है। तो ये कुरान हमें उस महदूद दायरे से निकाल के दूसरे उससे बाहर लाता है, ये दुनिया के मैटर के महदूद दायरे से उठा के बाहर लाता है और दिखाता है पूरी अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी उसकी जो ताकत है, जो उसके निजाम है उसको दिखाता है। जो वो देखता है और कंपेरिजन करता है कि मैं इस दायरे में हूँ और अल्लाह ताला की वसत इतनी ज्यादा है, तो खुद इंसान हार मानता है कि ये नहीं है मुकाबला। और जब हार मानता है तो दो चीजों में हार मानता है, अल्लाह ताला के इल्म की जो इजहार है दुनिया में दो तरह से मेनली हो रहा है, एक हालात पे जो हालात आ रहे हैं दुनिया में वो अल्लाह के इल्म से आ रहे हैं, और दूसरा अल्लाह ताला ने जो कुरान में और अहकाम दिए हैं अपने इल्म से। अगर इंसान को ये बात समझ आ गई कि मेरा इल्म महदूद है, अल्लाह ताला का इल्म महदूद है, तो इंसान दोनों जगह हार मानता है। क्या मतलब कि हालात को ऑब्जेक्ट करना छोड़ देता है, कभी नहीं कहता ये क्यों हुआ, पुरसकून जो मर्जी हो जाओ कभी नहीं कहता क्यों हुआ। हाँ ये सोचा करना क्या है, आंसर कैसे करूं, क्वेश्चन तो आ गया अब इसको आंसर कैसे करूं, ये नहीं ऑब्जेक्ट करता ये क्वेश्चन क्यों आया। दूसरा ये पहलू होता है कि जब इसी तरह हुक्म आता है अल्लाह का और वो सोचता है लॉजिकली, उसे समझ नहीं आती कि क्यों ये हुक्म आया, तो वहां भी ऑब्जेक्ट नहीं करता, वो समझ जाता है कि किसी हकीम ने दिया है और वो इतना उसके बेनिफिट गिना रही है तो उसके पीछे होगी, तो सरेंडर कर जाता। ये दो नेचुरल डेवलपमेंट होती है जब इंसान इस बात को समझ जाता है कि मेरा दायरा बहुत महदूद है और अल्लाह ताला का दायरा ना महदूद। या तो मैं दो ही ऑप्शन, या तो लेबल कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह ताला हिकमत से काम नहीं ले रहे, तो ऑब्वियसली ये बात तो नहीं है, यानी कि ऑप्शन भी नहीं। तो दूसरी ऑप्शन यही कि अल्लाह ताला रहम करते हैं या अदल करते हैं या और अल्लाह हिकमत से काम ले रहे, उसे पता है हर जानदार हर चीज का, तो हिकमत से फैसले करते हैं। तो अगर मैं इस चीज को एडमिट कर रहा हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट कैसे कर सकता हूँ उस हकीम पर। तो इसलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमा दिया ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलु, क्यों कोई भी अल्लाह से सवाल नहीं कर सकता क्यों हुआ, अल्लाह ताला हर एक से पूछेगा क्यों, यानी हम सबसे क़यामत में पूछेगा क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों, ये अल्लाह ताला ने डिक्लेयर कर दिया कुरान के अंदर बादशाह अंदाज में, उससे कोई नहीं कह सकता क्यों। इसलिए कभी कहना भी नहीं चाहिए नहीं समझ में आ रही और हालात हैं या अहकाम है, तो क्यों का ना निकाले। हाँ समझने के लिए पूछ सकता है, समझने के लिए पूछ सकता है, जैसे डिस्कशन तकदीर पे चल रही है तो पूछ सकते हैं कैसे होते हैं क्या तकदीर होती है, तो ठीक है प्रश्न, एक समझने के लिए होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता। और अगर कोई ऑब्जेक्शन करेगा तो इस आयत की वजह से ये बात डिटरमिन्ड है और लिखी हुई है कि कुफरी होगी, अल्लाह से ऑब्जेक्ट करना कुफर होता है। इसलिए बहुत एहतियात खासतौर पर मसायब के अंदर ये मुहतात होना चाहिए, बच्चा बहुत हो गया तो ये क्यों हो गया, ये जुमला क्या करना चाहिए वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ा था जिसमें जिसका खुलासा यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र ने अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का भी एक शख्स है, एक इंसान है, एक अब्द है कि जिसको आपसे ज्यादा इल्म है उन्हें तकदीर करेंगे। और अगर मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए और उनसे कहा कि मुझे अपना स्टूडेंट बना लें, उन्होंने कहा कि आप नहीं मेरा स्टूडेंट बन सकते, मतलब अगर स्टूडेंट बन भी गए तो आपको समझ ही नहीं आएगी उस चीज़। तो अल्लाह ताला ने इनडायरेक्टली बता दिया तकदीर का क्यों अलग क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारी इल्म से और तुम्हारी सोच से तुम्हारी कैपेबिलिटी से बाहर। लेकिन एग्जाम्पल कुछ दे दी उन्होंने, फिर भी कहा मुझे अपना स्टूडेंट बनाए, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, और वो आगे चले और पहले की कश्ती में बैठे सुराख कर दिया फिर, यानी कि वो मुफ्त उन्होंने बैठाया, वो जानते थे, उन्होंने जाके उसको सुराख कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान कि आपने एक कश्ती पर सुराख किया हालांकि उन्होंने आपके साथ रहम किया था, वो डूब जाएगी कश्ती। तो उन्होंने कहा यही तो मैं कह रहा था आप नहीं समझ सके। उन्होंने कहा अच्छा फिर आगे चलो, आगे कुश्ती में पहुंचे, बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चे को पकड़ा कत्ल कर दिया। हैरान बच्चा कत्ल कर दिया, मैं नबी हूँ और शरीयत के अंदर है कि कोई कत्ल करे तो उस बदले में कत्ल किया जा सकता है, वरना किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। तौरात के अंदर ये मेंशन है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल, तो आपने बच्चे को कत्ल कर दिया, मासूम बच्चे को। उन्होंने फिर कहा तो नहीं समझ सकते, फिर आगे चले, एक दीवार गिर रही थी यानी बैठे थे, बस्ती में गए, उनसे खाना मांगा, भूख लग रही थी, उन्होंने खाना नहीं दिया, वो नहीं जानते थे ये तो वक्त के नबी और वो है, तो उन्होंने कहा नहीं कोई खाना नहीं है। तो बैठे बैठे दीवार गिरती देखी, इस्लाम उठे उसे सही कर दिया, तो मूसा इस्लाम ने फिर ऑब्जेक्ट किया, क्यों अगर गंदा ही था तो किसी से पूछते कि किसकी दीवार है, उससे जाके कहते कि उज्जत में लूंगा पैसे लूंगा, तो आप दीवार ठीक करते पैसे मिलते हैं खाना तो खा रहे थे, अब तो खाना भी नहीं आपने आगे दीवार ठीक कर। उन्होंने कहा कि बस अब हमने लगाई, बस ये मैंने, उन्होंने शर्त लगाई थी शुरू में कि मुझसे क्वेश्चन ना करना जब तक मैं बताऊंगा, अब वो हर जगह उस शर्त को तोड़ते जा रहे थे, उन्होंने कहा फिर हमने जुदाई है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसके पीछे राज क्या है, वो है आंसर क्यों का हमारे। तो पहली चीज उन्होंने कहा कि जो बस्ती थी ना वो कुछ मिस्कीनों की थी, यानी कि जो गरीब थे, और वो उनके पास कश्ती सारा सारा उनका माल था, उससे वो मजदूरी करते थे। अब हुआ क्या कि अल्लाह ताला ने मुझे बताया कि आगे बादशाह है, बादशाह है, और वो क्या करता है कि वो हर जो अच्छी कश्ती होती है छीन लेता है वाले में, तो तुम इस कश्ती में सुराग करो ताकि वो आगे छीन लेना, वो कहेगा सुराग करो, कहेगा ठीक है ये मेरे काम की निकल आए, ये थी हिकमत सुराग। बजाय तुम्हें लग रहा है कि मैं डुबो रहा हूँ, बजाय तुम्हें लग रहा है मैं नुकसान दे रहा हूँ, बजाय लग रहा है जुल्म कर रहा हूँ कि मैं, उन्होंने रहम किया दूसरी ने मुझे हमें सवार किया और मैं उनके साथ ये मामला कर रहा हूँ, लेकिन आगे कुछ होने वाला था। अब ये टाइम फ्रेम में जो आगे होने वाला था वो तुम्हारे सामने है, उस पर अल्लाह फैसला कर रहे हैं कि यहाँ पे ये कर दो या इंटरफेरेंस करो अब उसको नुकसान से बचाने के लिए, एक चीज। दूसरा, जो मैंने बच्चे को खत्म किया, तो बच्चे को जो कत्ल किया उसकी रीजन है, और वो रीजन क्या थी, वो अल्लाह ताला ने कहा कि वजह यह है कि उनके वालदैन नेक थे, पेरेंट्स थे वो नेक, बच्चा बड़ा होके काफिर बनना था, अल्लाह के इल्म था कि बच्चे ने आगे जाकर काफिर बनना है, और इन पेरेंट्स को उससे इतनी मोहब्बत है कि उस मोहब्बत में ये भी काफिर हो जाएंगे या गुनहगार हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि यहां भी इंटरफेयर करो, उसको कत्ल करो। अब कत्ल करने पे जब वो सबर करेंगे बच्चे के पास होने पे, तो मैं इनको एक और बच्चा दूंगा, यानी इन्हीं में आयात से दिक्कत है, और वो बेहतर होगा उससे, नेकी में भी, तकवा में भी, पाकीज़गी में, फरमाबरदारी में, हर चीज में उससे बेहतर होगा। अब वो उनके लिए बेहतर होगा, वो ईमान पे उन्हें कायम रखेगा, और कुतुब में लिखा हुआ है किताबों के अंदर कि वो गालिबन एक लड़की थी, उसकी शादी हुई, आगे अंबिया पैदा हुए सर। अब काफिर बच्चे को रिप्लेस किया जा रहे हैं एक ऐसी लड़की से जिसने आगे से अंबिया पैदा होने, ये प्लानिंग। अब इसमें इंसान ही है क्या करे, देखिए इसमें तीन जगह से इंटरफेरेंस है, एक तो ये है कि बच्चे को कत्ल कराए कि कुफर होना था, ये इंसान नहीं समझ सकता, एक ये कि ऐसी औलाद देनी है जो अभी इंसान की सोच में भी नहीं, पेरेंट्स तो होते तो ये सोचे हो कि हमारा एक ही बच्चा था वो खत्म हो, हम लावारिस हो, हमारे अब कोई विरासत वाला नहीं रहा, वारिस नहीं, तो ऐसी बात नहीं, अल्लाह ताला ने प्लानिंग की हुई, अब वो सबर कर ले अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया। लेकिन तीसरी बात भी है, वो ये कि वालदेन उनके नेक थे, अब नेकी का असर जाहिर करना है, देखिए ये भी एक निजाम चलता है कि ये बुरा है इसका असर जाहिर करना, इसकी बुराई का असर जाहिर हो, ये नेक है इसको इसकी नेकी का असर जाहिर करो दुनिया के अंदर, इसकी औलाद को बचाओ, इसकी हिफाजत करो, इसके माल की हिफाजत करो, ये सारे निजाम भी रहमत का भी चल रहा होता है जो नेक लोगों की हिफाजत कर रहा होता है। अल्लाह का कुरान ने कहा वह वो यतवल्लफा नहीं कि वो वली है नेक लोगों का, वो हिफाजत करता है, वो उनका दोस्ती दोस्त है। अब ये तो इंसान नहीं सोच सकता कि इसलिए कोई फैसला किया जाए कि इसका पेरेंट नेक थे, पहली बात इंसान जज ही नहीं कर सकता कौन नेक है कौन बस, किसके दिल में क्या है किसी को क्या पता, उधर जाहिर के अमाल पे फैसले करते, अल्लाह ताला जानते कि ये हकीकी नहीं है इसके इंटरफेयर करो। और तीसरी चीज उन्होंने कहा कि जो मैंने दीवार सीधी की वो इसलिए की क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे बताया कि इसके नीचे खजाना है, क्योंकि पहले दबाया जाता था जमीन के अंदर, तो ये निशानी थी उस खजाने की। अब बच्चे जो थे किनका खजाना है, दो यतीम बच्चों का जिनके वालिद, फिर अल्लाह ने कहा उनके वालिद नहीं थे जो फौत हो चुके हैं, जिनके यतीम बच्चे वो नेक थे, अब उनकी नेकी का असर फिर जाहिर करो कि इन बच्चों के माल की हिफाजत करो, इससे कितने मैसेजेस पे इस वाक्य में मिलते हैं कि नेकी जाया नहीं जाती दुनिया के लिए। अभी आखिर की बातें नहीं आ रही, ये सारी दुनिया की बातें। हम चाहते हैं कि हमारी हिफाजत हो, नुकसान से बचे, बच्चे बचे, ये जो, लेकिन उसके लिए तो इस्बाब है जो अल्लाह तआला कुरान में बताते हैं कि उसके लिए करना पड़ता है। अल्लाह की माने फिर देखिए अल्लाह तआला कैसे इंसान सारी चीजें इंसान को देते हैं जो वो चाहता है। तो नेकी का असर जाहिर हो रहा है कि उन्हें एक अपने उस नेक बंदे को कहा जा रहा है जाके रिवार्ड ठीक करो और पैसे ना लो उसके, तो ये तीन है बेचारे बगैर पैसों के तुम काम करो और उसको खिदमत में लगाया हो। और ये है कौन? नबी और रसूल अलैहि सलाम। तो फिर ये चीज से नेकी का असर जाहिर करना और खजाना जमीन के अंदर है, जाहिरी आंख थोड़ी उसको देखने के, अब उससे फैसले हो रहे हैं कि यहाँ इसको दीवार को ठीक करो, नीचे खुदाओ। तो ये वो अल्लाह ताला ने हमें समझाया कि ये वो चीजें हैं कि जब मेरे डिसीजन और अहकाम के अंदर होती है जो तुम्हारी जानवी नजर और इस चीज से बाहर होती है, तो छोटी छोटी बातों में इलेक्शन शुरू हो जाते हैं। ये क्यों है, यू क्यों है, जैसा मुसलमान इस्लाम ने जाहिर को देखते हुए कहा। तो वक्त नबी ना अगर क्यों कह रहे हैं तो हम जिनका इल्म बहुत महदूद है वो कैसे इससे बच सकते। तो एक मैसेज कह दिया कि बस ना हो, तुम्हारी समझ से ये बाहर। अब इनका इल्म कितना था, हदीस पाक में गल में आता है कि लिखा हुआ है कि जब एक समंदर पे खड़े थे मूसा अलैहिस्सलाम के जब अलैहिस्सलाम, तो एक चिड़िया आई, एक परिंदा आया छोटा सा और पानी से पानी पी के चला गया। रसूल अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि इस चिड़िया ने जितना या परिंदे ने जितना पानी पिया है और इससे जितना इस समंदर में, यानी समंदर का पानी और इसके बीक का, इसकी चोंच का पानी का जो कंपेरिजन है, इतना तुम्हारे और मेरे इनको मिला के अल्लाह के इनको कंपेरिजन भी नहीं है। वो नबी है वक्त के और इनके पास तकदीर का इल्म है और ये कह रहे हैं कि हम दोनों के इल्म को अगर कंबाइन करें और अल्लाह ताला के इल्म को अगर कंपेरिजन हमारे इल्म से करें तो कंपेरिजन नहीं है उससे, फिर भी कोई कंपेरिजन होगा, कोई पॉइंट जीरो 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 कुछ तो रेशो होगी, लेकिन हमारा तो कुछ है ही नहीं। वन ओवर इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो, मैथ में पढ़ाया जाता। तो अल्लाह ताला के इल्म इंफिनिटी ला महदूद और यहाँ पे चलो वन कह रिपोर्ट टू जीरो, मतलब कंपेरिजन है ही नहीं। एक और बात इसके अंदर छुपी हुई है इस वाक्य के अंदर कि वो भी मैसेज है तकलीफ के हवाले, और वो क्या कि जब इंसान कोई बुराई करे या बुरा हो जाए, अब इंसान उसमें ये कहता है, यानी कि ये कह सकता है कि अल्लाह ताला फायदे ठीक था, यानी कि नुकसान हुआ तो अल्लाह की अल्लाह ताला ने किया, ब्लेम दे सकते अल्लाह ताला, बात तो ठीक है अल्लाह ताला ने किया, लेकिन अदब सिखाया है इस वाक्य के अंदर। और वो ये था कि जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया रीजन के क्यों हुआ, तो पहली रीजन बताई कि जो कश्ती में सुराग करने की, कहा कि फअरदतु अन आईबहा, कि मैंने इरादा किया कि उसमें सुराख कर दो, ऐड डाल दो कुछ, मैंने इरादा किया। हालांकि उनका तो इरादा नहीं, अल्लाह ताला ने हुक्म कर रहे थे कि करो, वो करते जा रहे थे, लेकिन अदब सिखाया कि कहा फअरदतु, मैंने इरादा किया कि वहां ऐड डाल दो। जब ऐड की बात आई तो कहा मैंने इरादा किया, और जब बच्चे को की बात आई तो अल्लाह ताला ने कहा फअरदना, यानी कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा फअरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरन मिन्हु ज़कातन व अक़रब रहमा, हमने इरादा किया कि उसको एक अच्छे बच्चे से रिप्लेस कर। तो अल्लाह ताला को मंसूब किया कि अल्लाह वहां मैंने इरादा किया, यहाँ का हमने इरादा किया, अल्लाह ताला ने इरादा किया कि एक नेकी नेक बच्चा उसको दे दिया। तो सिखाया कि जब कोई चीज अच्छी हो तो अल्लाह से मंसूब करो, जब बुरी हो तो अपने से मंसूब कर दो। हालांकि दोनों के पीछे फाइनेंसी की अल्लाह ही होता है, इंसान भी नेकी करे कहे अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी तो मैंने नेकी कर, कभी ये ना कहे मैंने नेकी कर ये मेरे अंदर भी कमाल है, नहीं अल्लाह ताला ने मुझे दिया इसलिए हो गया, जो कमाल भी और जहां कोई खामी हो, कोई नुकसान हो जाए, कोई गलती हो जाए, फौरन अपने बदल मुझसे गलती हो। लेकिन चूंकि कॉन्सेप्ट ये होगा कि अल्लाह की मर्जी से हुई तो वो बेचैनी बेकरारी नहीं होती, अल्लाह ताला ये चाहते थे हो गया, वो आगे जिक्र करते हैं कि प्रैक्टिकली इम्पैक्ट क्या है तकदीर के हमारी जिंदगी के अंदर, कैसे जिंदगी पुरसकून हो जाती है, कैसे जिंदगी के अंदर करार आ जाता है, कैसे जिंदगी के अंदर यानी हकीकी सुकून नसीब होता है, और कितनी बाकी बीमारियां इंसान से खत्म हो जाती हैं, तकब्बुर और बेसब्री और नाशुक्री वगैरह। और तीसरी चीज जिस वाक्य के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र की, कहा रहमतन मिन रब्बिक, आखिर में जब हजरत खिज़र अलैहि सलाम ने कंक्लूड किया वाक्य को, दीवार की रीजन भी बता के कि क्यों सीधी की, तो आगे ये जिक्र अल्लाह ताला ने किया कि उन्होंने कहा रहमतन मिन रब्बिक, ये रहमत थी आपके रब की तरफ से मुतलसला, कि जितने इंसिडेंसेस आपने देखे ये अल्लाह की रहमत की बेसिस पे हुए, बच्चा कत्ल हुआ अल्लाह की रहमत की वजह से, कश्ती में सुराख हुआ अल्लाह की रहमत की वजह से, जो हम कह रहे हैं कि अदल या रहमत या जुल्म, तो रहमत की वजह से हो रहा है, आपको फील हो रहा होगा कि ये जुल्म हो रहा है, लेकिन जुल्म नहीं हो रहा, ये अल्लाह की रहमत डिसीजंस के अंदर। और फिर कहा वमा फालतुहु अन अमरी, कि मैंने इनमें से कोई काम भी खुद नहीं किया, ये सब अल्लाह के हुक्म से, मतलब बता दिया कि जो कुछ हो रहा है फायदे हकीकी करने वाली जात अल्लाह। ऑलमोस्ट तकदीर के सारे एस्पेक्ट्स से बातें अंदर अल्लाह ताला ने इसको जमा किया, बहुत कीमती बात है कि इंसान को अपनी हकीकत पर नजर है इल्मी लिहाज से और हर लिहाज से कि वो दुनिया के अंदर है क्या और वो क्या बनता बन रहा है। इसी तरह कुरान पाक ने दूसरी जगह ये भी फरमाया कि मा असाबक मिन हसनत मिन हसनत फमिन अल्लाह वमा असाबक मिन सैयात फमिन नफ्सिक, मफहूम है कि मा असाबक मिन हसनत, जो मुझसे नेकी पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ, और कहा का फमा असाबक मिन सैया, जो मुझे बुराई पहुंचती है फमिन नफ्स, वो मेरी वजह से। दूसरी जगह अल्लाह ने वाज तौर पर आयत जिक्र की, हालांकि दोनों ही करने वाले अल्लाह का, लेकिन ये कहा कि ऐसे ही किया करो, हदीस पाक में मिलता है कि एक शख्स तहज्जुद के लिए उठता है तो अल्लाह के सामने खड़ा होता है, लेकिन अल्लाह ताला से कहता है तूने मुझे उठा दिया, अल्लाह ताला उसकी सिस्टम में तारीफ करते हैं कि देखो उसने कितनी हिम्मत की, नींद आ रही थी इसने उठा, वो सर्दी थी वजू किया ठंडे पानी से, मैं सामने खड़ा हो गया, सारे तो अल्लाह ताला खुश होते हैं। और एक शख्स दूसरा है वो कहता है अल्लाह ताला एक मैं उठा, अल्लाह ताला कहते हैं तुम उठे या मैंने उठाए, कि कभी नेकी को अपने से मंसूब, अच्छाई कभी इंसान अपने आप से मंसूब ना करे, कि हकीकी बात है कि अल्लाह ताला इंसान और होता है कभी मंसूब करे तो अल्लाह ताला को गैरत आती है, वो तौफीक ही छीन जाती है, अल्लाह छीन लेते हैं। कोई खूबी हो अगर इंसान तकब्बुर करे अल्टीमेटली गंड निकलने वाला है कि उससे वो छीनेगी, अल्टीमेटली होगा। अब एक और चीज जो डिस्कस करनी है वो ये कि फिर हमारी प्लानिंग क्या है, मतलब कि जो हम तदबीर करते हैं, प्लानिंग करते हैं, चीजों को प्लान करते हैं, अगर ये ऑलरेडी सब कुछ प्री प्लान है तो फिर वो कहाँ पे लाइक करती है। तो पहली चीज तो पहले ही जो चार एस्पेक्ट से तकदीर थे उनको मर्ज करें, क्या कि पहली चीज कि अल्लाह ताला ने उनसे सब कुछ लिख दिया, क्या लिख दिया कि दूसरी चीज कि या के यहाँ 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 फॉर एग्जाम्पल एक शख्स की जिंदगी है, अल्लाह ताला सब पता है, पहले से अल्लाह ने लिख दिया कि ये करेगा और एज अ रिजल्ट जन्नत से जहन्नम में चला जाए। अब अल्लाह ताला ने देखा कि यहाँ यहाँ ये इख्तियार से काम करेगा, वो पहले लिख दिया, और ये भी लिख दिया कि फलां 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 जगह में उसको मजबूर करूंगा, इसको यहाँ पैदा करूंगा, उसका रिस्क कितना होगा, उसको मौत यहाँ आएगी, उसके अंदर जिंदगी में ये मिसहैप्स होंगे, ये मुसीबतें आएंगी, ये होगा। ये दोनों चीजें पहले से लिखी जा रही है, यानी कि कहीं पे इख्तियार है कहीं पे मजबूर है, दोनों चीजें पहले लिखी जा रही है और फैसले अपने हिकमत से किए जा रहे हैं कि कैसे फैसला करूँ कि इसको ये मुसीबत देनी है या ये मिसहैप देनी है या ये जहाँ पे मजबूर करना है, ये हिकमत है। यानी चौथी चीज क्यों हो रहा है, तो अल्लाह की हिकमत से वो प्लान हो रहा है, और ये सब कुछ मजबूर मुख्तार और सब कुछ पहले लिख के अल्लाह ताला ने तकदीर के अंदर फेस किया। तो इसको हदीस में डिस्क्राइब किया जाता है कि पहले से तय है और जन्नत में जाने वाला जहन्नम में जाने वाला पहले से तय है, तुम दवाई खाओगे ये भी तकदीर है। क्या मतलब कि बीमारी आएगी मजबूर होगे तुम, बीमारी आई मजबूर है, इंसान चाहते ना है लेकिन आगे बीमार हो गए, अब दवाई खाना उसका इख्तियार है, वो दवाई खाएगा, अब रिजल्ट आना फिर उसके इख्तियार में नहीं है। अब अल्लाह ताला रिजल्ट अपनी मर्जी से वहां ले आएंगे जाएंगे। ये सब कुछ अल्लाह ताला को पता था कि यहाँ मैं इसको मजबूर करूंगा बीमार करके, ये अपने इख्तियार से दवाई खाएगा और उसका रिजल्ट क्या आएगा ये पहले सब कुछ प्री प्लान मैंने पहले लिखा हुआ। लेकिन जहां वो इख्तियार को मिस यूज करेगा या नहीं यूज करेगा, अल्लाह ताला वहां पे नाराज हो कि क्यों यार तुमने यूज नहीं किया, क्यों नहीं दवाई खाई बीमार। ये जिस्म की हिफाजत भी इंसान के जिम्मे है, क्योंकि ये उसकी चीज नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से मानत है, कोई इलाज ना करे तो इलाज होता है। अल्लाह ताला पूछेगा क्यों नहीं की, क्या तुम्हारा ऑप्शन अवेलेबल थी, क्यों नहीं किया। तो ये सब कुछ पहले से तय है। इंसान का काबिल होना, होशियार होना ये करीब में कि वो भी तकदीर से, मतलब क्या कि काबिल होना या होशियार होना यहाँ पे मजबूर है। इंसान शार्प माइंडेड है, उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, तो ये अल्लाह की देन है। एक तो नहीं है तो ये अल्लाह की देन है। लेकिन उस जहां पे वो मजबूर था आईक्यू लेवल और सारी चीजों में, आगे एफर्ट उसके इख्तियार में थी, तो वहां ये पूछा जाएगा ठीक है तुम्हारा आईक्यू लेवल ये था, तुम्हारा जहन शार्प था या नहीं था, लेकिन एफर्ट तुमने क्या किया, वो तुम्हारे इख्तियार में थी। तो दोनों चीजें पहले से तय करके लिखी गई कि यहाँ पे ये मजबूर है, यहाँ मुख्तार है, यहाँ इख्तियार से ये करेगा, सब कुछ पहले से तय, रिजल्ट भी जो निकलेंगे वो भी तय। तो पहले तो ये वो उन चीजों का मर्ज करना है जो हमने अभी तक जिक्र किया। अब ये समझना कि तदबीर और प्लानिंग क्या चीज है, ये भी समझना कि ये पार्ट से थोड़ा कंसेप्ट बन गया तो अब आगे बात ही जल्दी समझ आ रही। प्लानिंग इंसान दो तरह की करता है, एक वो कह सकते हैं कि वो यकीनी और गैर यकीनी, मैं इन दो नाम से उनको मंसूब कर रहा हूँ। वो क्या मतलब यकीनी और गैर यकीनी? यकीनी का मतलब ये कि जिस पे मुझे रिजल्ट का 100% श्योरिटी है, गैर यकीनी वो जिस पे मेरे रिजल्ट की 100% श्योरिटी नहीं है। हो सकता है मेरे फेवर में आए, हो सकते मेरे गेंस आ जाए, तो इस बेसिस में मैं एक को यकीनी कह रहा हूँ, एक को गैर यकीनी कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जिसको मैं यकीनी कह रहा हूँ उसका डेटा, जो उसका यकीनी होने की वजह वो मेरा इल्म नहीं है, क्योंकि वो पहले हम बात कर चुके हैं कि मेरा इल्म महदूद है, मैं इस चीज को मानता हूँ। हो सकता है कि 99.999% मेरे यकीन होगी होगा, लेकिन फिर भी 0.00% मुझे होगा कि हो सकता है ऐसा ना हो, इंसानी इल्म ऐसा ही होता। तो मैं उसको भी यकीनी नहीं कह रहा, मैं यकीनी उसको कह रहा हूँ जो अल्लाह के इल्म पे बेस कर रही। मतलब क्या कि अल्लाह ताला ने कुछ जगहों पे कहा कि ये चीज लो करो। फॉर एग्जाम्पल, उसकी एग्जाम्पल लेते हैं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा जंग के हवाले से कि वाअइदु लहुम मा इस्ततअतु मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैलि तुरहिबून बिही अदुवल्लाहि व अदुवकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहु। मफहूम इस आयत का ये है कि तैयार करो जो तुमसे हो सके, मत बता तुम जितनी तुम में कैपेबिलिटी है, जो कुछ तुम कर सकते हो, कुवत में घोड़ों के अंदर, ताकि रोक पड़े अल्लाह के दुश्मनों में और तुम्हारे दुश्मनों में और दूसरों पर जिनको तुम नहीं जानते। तो यहां अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिया कि असबाब मैटर के अंदर उलझो, एफर्ट करो, और मस्त पता तुम का वर्ड होता है जितनी तुम पे कैपेसिटी कैपेबिलिटी और तुम्हें तुम्हारे अंदर इस्तेताद है करो, इस बात के अंदर प्लानिंग करो। ये अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिया प्लानिंग, जो जिसको मैं गैर यकीनी प्लानिंग कह रहा हूँ, जो असबाब और मैटर के अंदर होती है अपनी अकल से, इंसानी अकल से प्लान करती है, तो अल्लाह ताला उसको इसको उससे रोक नहीं रहे। अल्लाह ताला कह रहे करो तुम, जरूरी है और थोड़ी बहुत भी नहीं करनी, मस्तता तुम करनी कितनी। अब यहां से ये बात समझनी चाहिए कि कोई शख्स तकदीर पर लाई करके ना बैठ जाए कि जी को प्लान ही ना करे, कोई एफर्ट ही ना करे, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च ही ना करे कि डेटा है क्या, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ इन्फेक्शन इतनी है, क्यों इतनी है, कोई कह देते तकदीर में है, इतने बच्चे मरने से मार गए, इंफेक्शन रेट इतना है, नहीं सोचो, डाटा देखो क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम पीछे। ये अल्लाह का हुक्म है, मस्त तुम एफर्ट करो, प्लानिंग करो, लेकिन ये गैर यकीनी से यकीन नहीं इसमें कामयाबी हो भी सकती, गैर यकीनी सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि और रिजल्ट का नहीं पता, वो कामयाबी भी हो सकती है नाकामी भी हो सकती है। कामयाबी नाकामी मेरे ख्याल में नहीं, वो मुआ में मजबूर हूँ, वो उस हेडिंग के अंदर है मजबूर हूँ कि अल्लाह ताला फैसला करते हैं इसको कामयाब करना या नहीं करना। जो इख्तियार में है वो वाली जो पोर्शन है वहां मैं अल्लाह के सामने जवाब दूँ कि मैंने मस्तम किया था करें, जितनी मेरे में कैपेबिलिटी थी मैंने वहां इनपुट डाला कि नहीं डाला, जितनी मेरी ब्रेन ब्रेन की कैपेबिलिटी थी मैंने किया कि नहीं किया, जितनी अवेलेबल सोर्सेस थे मैंने उनको यूज किया या नहीं किया, मैं उसका मसूल हूँ, मैं उसका जवाब दें। मुझे अल्लाह पूछेंगे ना ये पूछेंगे कि तुम्हारे रिजल्ट से, ये कभी नहीं पूछेंगे तुम यहाँ पास क्यों हो गए या फेल क्यों हो गए या तुम्हारे फेवर में क्यों रिजल्ट गए अगेंस्ट क्यों गए। अल्लाह तआला मैंने जितना कर सकता किया ठीक है यही मैं चाहता हूँ। तो एक चीज, लेकिन यकीनी चीज अल्लाह ताला ने किसको करार दिया, उसी सूरत के अंदर उसी सीक्वेंस के अंदर अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा लकीतुम फियतन फसबतू वस्कुरुल्लाह कसीरल्लकुम लअल्लकुम तुफ्लिहून। कि ईमान वालों जब तुम्हारा किसी जमात से आमना सामना हो जाए जंग में साबित कदम रहो, डट के लड़ो, वस्कुरुल्लाह कसीरल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह से जिक्र कसर से करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब यहाँ अल्लाह ताला लअल्लकुम तुफ्लिहून कामयाबी को लिंक कर रहे हैं जिक्र से और साबित करने, ये यकीनी सबब है। यानी कि प्लानिंग के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, इस बात के अंदर एक गैर यकीनी कि जो अल्लाह ने कहा कि जितनी एफर्ट हो करो लेकिन उसमें रिजल्ट का कोई 100% श्योरिटी नहीं, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने रिजल्ट खुद मुअय्यन कर दिए, खुद बता दिए कि तुम कामयाब हो गए अगर इनको करो, ये है यकीनी। कैसे होगा, अल्लाह की कुदरत से करेंगे। वही दो पार्ट्स है, एक है कॉज इफेक्ट मैटर का पार्ट है, वहां अलग कहते हैं हो सकता है रिजल्ट ले हो सकता ना ले, एक दूसरा है जहां अल्लाह ताला वादा करते हैं कि अगर तुम ये करोगे मैं ये रिजल्ट लाऊंगा अपनी कुदरत से लेके आऊंगा। ये दुनिया के अंदर दो निजाम चल रहे हैं, एक है ये कॉज इफेक्ट का दुनिया के अंदर मैटर है, ये है तो ये है, ये है तो ये है, एक है अल्लाह ताला का निजाम, वो क्या है कि अगर मेरी बात मानोगे मैं तुम्हें कुछ चीजें देता हूँ अगर करोगे मैं अपनी कुदरत से तुम्हें कामयाब कर। अब कैसे करते ये अल्लाह नहीं जिक्र करते, वो फरिश्तों को भेज के करते हैं, वो किसी और तरह से करते हैं, वो कहीं जिक्र नहीं। लेकिन ये दोनों पार्ट्स हैं हमारी एफर्ट्स के, दोनों पार्ट्स हैं हमारे प्लानिंग्स के, यानी कि दोनों लेने, एक यकीनी है एक गैर यकीनी। यकीनी इसलिए कि अगर उसको छोड़ के मैं दूसरी तरफ गया तो अब कोई श्योरिटी नहीं रिजल्ट फेवर में आए अगेंस्ट आए, लेकिन अगर उसके साथ गैर यकीनी के साथ इसबाब के साथ मैं अल्लाह ताला के यकीनी इसबाब को भी लेता हूँ और अहकाम को भी लेता हूँ तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मैंने अब पूरी तरह से अपनी एफर्ट कर ली, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर मेरी फेवर में जरूर आएगी। ये चीज इंपॉर्टेंट है समझने, और इसके लिए समझने के लिए इसीलिए अल्लाह ताला का इंशाल्लाह ये जरूरी है। अल्लाह ताला की नाराजगी आती है इंशाल्लाह ना कहे फ्यूचर में, बेशक वो अभी घंटे बाद का कहा हो दो घंटे बाद का कहा या दो साल का, इंशाल्लाह जरूर कहना सर यानी पाक में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा इंशाल्लाह कहा करें कि फ्यूचर में कहा करें इंशाल्लाह करें, अगर अल्लाह चाहेगा तो होगा। मेरी प्लानिंग है लेकिन मेरी कोई 100% श्योरिटी नहीं है, अगर अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए आखिरी बात आज की प्लान पार्ट से एग्जाम्पल है, यही जो बात जो एक कॉन्सेप्ट जिक्र किया तदबीर का प्लानिंग का, और वो मिसाल है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वाक्य में। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वालिद हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, दोनों नबी हैं। तो मुख्तसर वाक्य ये है कि जब छोटे थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि मुझे 11 तारे सूर चांद सजदा कर रहे हैं, उन्होंने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी खुशखबरी है इसका जिक्र किसी से ना करना। उनके भाई ने अब याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी क्योंकि उन्होंने नेकी तकवा और आगे नबूवत का सारा देख रहे थे, तो एक फितरी मोहब्बत पैदा हो गई। अब जेलस हो गए उनके भाई, ये क्यों हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अब जेलसी ऐसी चीज है क्यों मोहब्बत करते हैं नबी के बेटे। उन्होंने क्या किया कि ऐसा करते हैं उनको जिंद खत्म ही कर देते हैं, कत्ल करते हैं। दूसरे का कत्ल क्यों कर रहे हो इतना बड़ा गुनाह, ऐसा करो कि फेंको। अब उस दिन उस दौर में तो नहीं थे सोर्सेस कम्युनिकेशन, है वो बात खत्म वो गुम जाएंगे कहीं और चले जाएंगे। इन शॉर्ट के हुआ यही, हुए उन्होंने कुएं फेंका, कुएं में फेंक के वापस आ गए, बाप को कहा गया तो उसको भेड़िया खा गया। बाप ने सबक किया हमें याकूब अलैहिस्सलाम ने, जो अल्लाह को मंजूर। ये सारे तकदीर के मौजू इसके अंदर है, लेकिन एक बात जो आज बतानी वहां पर लेकर आ रहा हूँ। तो उन्होंने वहां से कुएं से काफिला करीब से गुजरा, उसने पानी के लिए अंदर से जब निकाला डोल तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पकड़ने पकड़ के बाहर आ गए, और उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार में जाके बेच दिया। बाजार में वक्त के जो उस एरिए का था मिनिस्टर कह रहे या हाई पोस्ट पे था, उसने खरीद लिया। उसने खरीद के उसकी बीवी ने कहा इसको आगे ना बेचना, ऐसे कुछ ना करो, इससे हम अपना बेटा बना लेंगे। यानी इतनी मोहब्बत अल्लाह ताला ने उन्हें डाल दी थी वो के आने वाले वक्त के नबी। तो बड़े हुए जवान हुए तो बीवी ने उनसे बदकारी के लिए बड़े होकर कहा, उन्होंने इनकार कर दिया, जेल में चले गए। बीवी ने जेल में डलवा दी, जेल में पड़े रहे, अरसा गुजर गया। फिर अल्टीमेटली बादशाह, वक्त का बादशाह था, उसे ख्वाब आया एक, तो उस ख्वाब की जो समझ नहीं आ रही थी, ख्वाब की ताबीर किया, तो उसे इंफॉर्मेशन मिल गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर जानते हैं। वो जेल के अंदर एक शख्स पड़ा हुआ है, वो ख्वाब की ताबीर बताता है। तो उन्होंने उसको बुलवाया और कहा कि ख्वाब की ताबीर, उन्होंने ख्वाब की ताबीर भी बताई, उसका हल भी बता दी कि कहत आएगा कि तुमने ऐसे करना है ऐसे करना। उन्होंने कहा तुम्हें इतना इल्म है तो आके तुम इस पोस्ट पर बैठ रहे हो कि जो मैनेज कर रही है, जो उसकी वजारत है सारा, उसको मैनेज तुम ही करो। इस पर अल्लाह ताला ने उनको वहां कुएं से हुकूमत पे पहुंचा दिया। अब हुकूमत में पहुंचे और वही हुआ कहता आया। अब जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एरिया था, अब डिकेड्स गुजर चुके हैं, तो वो बचपन से अब जवानी के हद तक पहुंच चुके हैं, शक्ल उनकी बदल चुकी, दाढ़ी आ चुकी, यही बातें हैं। अब वो कोई पहचान नहीं सकता कि वही है। तो याकूब अलैहिस्सलाम के एरिया में कहत पड़ गए, कहत इधर भी था, लेकिन इन्होंने प्लानिंग के तहत गल्ला इकट्ठा कर लिया। अब इर्द गिर्द के सारे लोग वहां मिस्र में आके उनसे गल्ला मांगते थे कि आपके पास है, हमारे पास नहीं है तो आप दे दें। तो यहाँ से याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे बेटों को चला के वहां गल्ला मिलता है, तो वो भी कहे। तो यहाँ पे वो बात बताने मकसूद है कि जब वो जा रहे थे, जब याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को भेजा कि जाओ उस इलाके में, तो पहले जो शहर होते थे वो वॉल्ड होते थे, दीवार होती थी, और दीवार के अंदर दरवाजे बने होते हैं। तो ये अब याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों में नसीहत की, वो अल्लाह ताला कुरान में मेंशन किया। कुरान की कोई आयत बगैर रीजन की नहीं होती। अब वाक्य के अंदर एक अल्लाह ताला ने आयत जिक्र किया, वो क्या कि قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه। ए मेरे बेटो, तुम उस शहर में जा रहे हो तो ऐसा करना कि एक दरवाजे से ना जाना, बल्कि मुख्तलिफ दरवाजे से जाना, यानी एक इधर से चला गया दूसरे से। और रीजन उसकी ये है, रीजन उसकी ये थी कि उनके जहन में था कि जब इतने नौजवान लड़के जा रहे होंगे तो किसी की नजर पड़ेगी, क्या नौजवान लड़के हैं, तो नजर ना लग जाए, नजर ना उनको लग जाए तो नुकसान ना पहुंचे, तो नजर का लगना हक है। तो नजर कोई हसर से या रश से या किसी भी नजर से देख रहे, इनको भी नुकसान ना पहुंचे। तो ये मोटे तौर पर बात है। प्लानिंग क्या है उस नुकसान से बचने की, कि मुख्तलिफ दरवाजों से जाओ, प्लानिंग ये है। रीजन क्या है कि नुकसान से बच जाए। और आगे उन्होंने जिक्र किया इस बात का, वमा उगनी अनकु मिन अल्लाह मिन शय इन अल हुक्म इल्ला लिल्लाह। ये कहे कि अब बच्चों की तबीयत पर है कि देखो ये मेरी प्लानिंग है, वमा उगनी अनकु मिन अल्लाह मिन शय, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता अल्लाह ताला, प्लान कर सकता हूँ बचा नहीं सकता। क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें फैसला करे नुकसान पहुंचे, मैं ये नहीं, मेरी प्लानिंग कोई काम आ जाएगी, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। इन्हें हुक्म अल्लाह लिल्लाह, हुक्म अल्लाह का, फाइनल डिसीजन फाइनल रिजल्ट वो अल्लाह का ही होता है। अलैहि ही तवक्कल तू, मैं उसी पे भरोसा करता हूँ, फअलैहि ही फल जा तवक्कल मुतवक्किल, उसी पे भरोसा करने वालों को भरोसा करना चाहिए, तवक्कल करने वालों को उसी पे तवक्कल करना चाहिए। तवक्कल को डिफाइन कर दिया, तवक्कुल के अंदर प्लानिंग का निकालना नहीं है, इंसान कुछ ना करे और कहे कि सब कुछ खुद हो जाएगा, ये तवक्कुल नहीं है। तवक्कुल ये है कि 100% मस्तता तुम जितनी कैपेबिलिटी प्लान करें और प्लान करके फिर रिजल्ट अल्लाह पे छोड़े कि अल्लाह ताला मैंने जो कर सकता था कर लिया, अब हुक्म तो तेरा है, फैसला तेरा, मैं तुझ पे नजर करता हूँ। इसको कहते हैं तवक्कुल। यानी कि क्या मतलब कि अगर फौर आ जाए तब भी खुश, अगेंस्ट आ जाए तब भी खुश। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है, एक शख्स एफर्ट करे कामयाब होने की किसी भी फील्ड में, किसी भी स्टूडेंट पढ़ाई में, बिजनेस वाइज बिजनेस में, उसके फौरन रिजल्ट आए, अगेंस्ट आए कुछ नहीं होता, बिना एफर्ट करे, एनालिसिस करे कहाँ गलती हुई, मेरे उसी तरह करे। ये फर्क होता है जिसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो हिम्मत आ जाता है, नहीं होता पता नहीं क्या है, और फिर जो बातें जाती है वो आगे जिक्र करूंगा, फलाने जादू कर दिया, फलाने ये कर दिया, फलाने वो कर दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, वजह क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि मैं एफर्ट करूंगा, रिजल्ट मेरे ख्याल में नहीं, वो अल्लाह पे, ये तवक्कुल, पास हो जाऊं फेल हो जाऊं, फॉर है अगेंस्ट है, ये अल्लाह की मर्जी, मुझे इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हाँ फेल होऊंगा, मैं नए सिरे से दोबारा शुरू होऊंगा, मैं बिल्कुल ज्यादा बराबर भी मेरे अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी कि नहीं मैं पास नहीं हो सकता, मैं कामयाब नहीं हो सकता, मैं उसी एफर्ट से दोबारा शुरू होऊंगा। ये कामयाब लोगों का जिंदगी और जिनकी भी उठा के देखें, ये एक एक पहलू होता है, वो कभी हार नहीं मानते, और ये मोमिन की निशानी है, कभी हार नहीं मानते, जो मर्जी फील्ड हो, दुनिया की हो या दीन की, कोई गुनाह और शैतान करता हो, कभी हार नहीं मानता, ठीक है मैं फिर एफर्ट करता हूँ अपनी इस्लाह में, फिर गुनाह होता है वो फिर खड़ा हो जाता है, ये साबित कदम होता है, अल्लाह तआला इसको पसंद करते हैं कि हाँ ये मुझे पहचान दिया। तो ये उन्होंने कहा कि पाले ही तब फल तवक्कल मुतवक्किलून, कि तवक्कुल करने वालों को उसी पे तवक्कुल करना, मैं तुम्हें को बचा नहीं सकता, होगा वही जो अल्लाह चाहेंगे। अब फिर अल्लाह ने एक स्टेटमेंट दी, वो एक आयत में अपनी बात जिक्र की, वो एक ऐसी बात है जिसको यानी कि समझाती है कि असल कॉन्सेप्ट क्या है। वलम्मा दखलू मिन हैसु अमरहुम अबूहुम मा कान युग्नी अन्हुम मिन अल्लाह मिन शै इल्ला हाजतन फी नफ्स याकूब अकज़ाहा, कि जब वो दाखिल हुए, मफहूम आयत का, कि जब वो दाखिल हुए जहां से उनके वालिद ने उनको हुक्म दिया था, उन्होंने ओबे किया, मुतलक दरवाजे से दाखिल हुए, तो अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि जब वो दाखिल हुए जहां से उनके वालिद ने उनको हुक्म दिया था, कोई नहीं बचा सकता था उन्हें अल्लाह से, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं, वहां वालिद ने कहा था, यहाँ अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि मुझसे कोई नहीं उन्हें बचा सकता था, अगर मैं कहता कि इनको नुकसान पहुंचे तो सारी वालिद की प्लानिंग धरी की धरी रह जाती। और फिर अल्लाह ताला ने बादशाहाना अंदाज में कहा इल्ला हाजतन फी नफ्स याकूब अकज़ाह, ये तो नाम याकूब अलैहिस्सलाम के दिन की बात के नजदीक, यानी कि उनकी ये सारी प्लानिंग, ये सारा डिसीजन कुछ नहीं है, ये सिर्फ उनके दिल में एक बात आई थी, उन्होंने कर दी, होना वो था जो मैंने चाहना, होगा वो जो मैं चाहूंगा, ये तो उनके दिल की बात थी, लेकिन इस इन अल्फाज के अंदर एक मैसेज है कि एक किससे कहा जा रहा है, एक नबी से, बूढ़े नबी से, जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, जिसके पास सारी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, उससे कहा जा रहा है कि उसने अपने इल्म, अपने तजर्बे, अपने अपनी पूरी फहम व फरासत से, पूरी हिकमत से जो डिसीजन लिया, अल्लाह ताला इतने से जुमले में उसकी नफी कर, कि क्या था हाजत थी नफ से याकूब अकरम, ये तो हाजत थी, बात आई थी दिल में, पूरी हो गई, होना तो वो है जो मैं कहूँगा, ये बादशाह अल्लाह। और फिर अल्लाह ने कहा वइन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु, कि उन्होंने ये जो बात कह दी थी कि भरोसा अल्लाह पे करना और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, इसकी अल्लाह ने तारीफ की, कि ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनके पास मेरी तरफ से अता किया हुआ इल्म है, वो तकदीर के इल्म को जानते हैं, अल्लाह की कुदरत के इल्म को जानते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी प्लानिंग पे रिलाई नहीं किया, उन्होंने कहा कि अल्लाह भी चाहेगा होगा, मैं भी तुम्हें किस चीज से बचा सकता। और फिर अल्लाह ताला ने कहा वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन हकीकी बात यह है कि इंसानों में अक्सर इसको नहीं जानते, अक्सर अपनी अकल पर फैसले करते हैं, अक्सर अपने अपनी सहम पे रिलाई करते हैं, और अल्लाह ताला के जो कोई मामला होता है तो ऑब्जेक्शन शुरू करते हैं। अल्लाह ने इस बात को शिकवा के कहने या ये बात बता दी कि वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यालमून, अक्सर लोग इतनी बात नहीं समझ रहे कि हुक्म मेरा है, बादशाहत मेरी है, हकमियत मेरी है, इल्म मेरा है, इनको जो दिया गया है वो जिक्र किया, इन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु, कि ये नबी का इल्म मैंने दिया हुआ था, ये भी उनका अपना नहीं था जिससे वो ये फैसले कर रहे, ये भी मेरी तरफ से था, ये भी छीनो, वो ये फैसले भी ना कर सके। तो एक एक आए तो एक एक जुमला हमें हमारी हकीकत बता रहा है, प्लानिंग करो 100% करो, अगर नहीं करोगे तब भी पकड़े जाओगे, कि क्यों नहीं की मैंने कहा था करो, لیکن جب کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ پہ لائے کرو, کامیاب ہو جاؤ, شکر کرو, اپنی اپنا کمال نہ سمجھو. اور اگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو کسی پہ بلیم نہ دو, انالیسس کرو کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی, اپنے اوپر لے کے آؤ بات کو, اور انالیسس کر کے پھر ایک نئے سرے سے, نئے جذبے سے, نئے عزم سے کھڑے ہو اور پھر دوبارہ فیصلے کرو اور پلاننگ کرو. پلاننگ دا پلاننگ دا پلاننگ, لیکن رزلٹس اللہ کے ہاتھ, یہ توقع کرو. اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پلاننگ دو طرح کی ہے, ایک یقینی اور غیر یقینی, کہ ایک ہم اپنی عقل سے جو پلان کرتے ہیں, ایک اللہ کے حکم سے جو پلان کرتے ہیں. اگر اللہ نے کہہ دیا نماز میں کامیابی ہے, مجھے بظاہر نظر آئے تو کان بند کر دوں تو میرے نقصان ہوگا, میں اللہ کی بات مانوں, یہ ہے حقیقی میری پلاننگ. اگر کامیاب ہونا چاہتا ہوں, میری یقینی پلاننگ یہ ہے کہ نماز پڑھوں, ہاں نماز کے وقت ہوگا میں پوری ایفرٹ کروں گا, اس کی پبلسٹی دکان میں میں پوری ایفرٹ کروں گا, اس کی ہر چیز بیسٹ ہو, اور پوری ایفرٹ کے بعد میں اپنی کامیابی اس پہ بھی رلائی کروں گا, لیکن میں یقینی اس بات پہ لوں گا اور جو رزلٹ آئیں گے اس کے اللہ سے محسوس کروں گا, کامیاب ہوں یا ناکام. اگر میری دکان بزنس ڈاؤن ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, نقصان ہو گیا ہے, مجھے کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فائل حقیقی ہے, اس نے کسی حکمت کی بنیاد پہ کیا ہے. میں نئے سرے سے اٹھوں گا اور نئے سرے سے دوبارہ پلان کر کے شروع ہوں گا, مجھے کوئی حالات اثر نہیں میرے اوپر ڈال. یہ ایک مضبوط, کامل اور بہادر اور شجاعت, یہ ہوتا ہے ایک مومن, اسٹرانگ مینٹلی بھی, فزیکلی بھی, اسپرچولی بھی, ایموشنلی بھی. ذرا سی بات پہ وہ اس طرح, یعنی اس کے اندر یہ بھی خوبی ہوتی ہے, اور جتنی ہمارے اندر خامیاں ہیں, کلیئر اپ ہونا اور دوسری وغیرہ وغیرہ, وہ ساری ہمارے اندر کی کمزوری کو ہائی لائٹ کر دیا. تو جو اسٹرانگ ہو جاتا ہے ہر طرح سے, پھر اس کے اندر یہ نہیں ہوتا, وہ سیلف کنٹرول, بڑا کنٹرولڈ ہوتا ہے, ڈسپلنڈ ہوتا ہے, ذرا سی بات پہ اس وہ شریعت کو چھوڑ نہیں دیتا, کہ وہ ذرا سی بات ہو غصہ آ گیا تو شریعت دیکھا نہیں سامنے کون ہے, ذرا سا کوئی اٹریکشن ہو اسے لگاؤ تو بد نظری کر دی, ایسا نہیں ہوتا, وہ بالکل کنٹرول چل رہا ہوتا ہے, اس کے ایک ایک ایکٹ بڑا کنٹرولڈ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ مومن کو دیکھنا چاہتے ہیں, یہ ہے, یہ مومن ہے, اس کو دیکھو, یہ ہے, یہ ایگزامپل بنے گا ہم سب کے لیے. تو ہماری ساری ایفرٹ قرآن کو سمجھنے کی, کہ ہم ایسے بن جائیں یہ جو اللہ تعالیٰ بنانا چاہتے ہیں. یہ صرف علمی باتیں نہیں, یہ صرف کوئی مطلب کہ ڈسکشنز نہیں ہے علمی, یہ ایک ایفرٹ ہے کہ ہم ہماری پرسنالٹی ویسی بن جائے جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ, جن کے اندر یہ ساری کنسیپٹس ہوتے ہیں. اب ایک امپیکٹ, ایک اسپیکٹ رہ گیا ہے دعا کا, جو کہ ٹائم ہو گیا, لیکن مختصر طور پہ ذکر کر دیتا ہوں جنرل انداز میں, کہ دعا بھی ایک یقینی سبب ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دعا مانگو, فدعو, کہ دعا کرو, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اب اگر میں نہیں دعا کروں گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم موجود, اس کو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھتے تکبر کر رہے ہیں, میرے سامنے فقیر کون فقیر ہے جو گر جاتا نہیں ہے, معافیا نہیں مانگتا, یعنی کہ آگے ہاتھ نہیں چلاتا, محتاج تو آگے ہاتھ چلاتے, تو اللہ کہتے متکبر ہیں, ناراض ہوتے ہیں جو دعا نہیں مانگتا. اور دعا میں صرف ایک چیز ہے, وہ ہے عاجزی. دعا عاجزی کا دوسرا نام, گڑ گڑانا, رونا دھونا, اس کا دوسرا نام. دعا پڑھنا نہیں ہوتا, دعا ہمیشہ مانگی جاتی, کیونکہ کوئی عبادت اگر فار ایگزامپل عاجزی کے بغیر نہ ہو, عاجزی کے بغیر ہو, تو پھر بھی اسے عبادت کہہ دیا جاتا ہے. نماز کوئی پڑھ رہا ہے نہیں تو جو اسے نماز ڈکلیئر کرتے ہیں, لیکن دعا اگر کوئی عاجزی کے بغیر اور اس کے بغیر توجہ کے بغیر مانگ رہے تو دعا نہیں ہے, دعا ہے ہی عاجزی کا توجہ. تو دعا کا مانگنا یہ ایک یقینی سبب ہے, یعنی کہ میں ایک تو پلاننگ کر رہا ہوں اپنی, دوسری تو اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں, تو اس پہ مجھے زیادہ لائے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جو دعا مانگے گا اسے قبول کر لوں گا. رزلٹ تو مزید لائے ہمارے, کئی بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تین رزلٹ آتے ہیں دعا کے, یا تو ایلیٹیز مل جاتی ہے اگر اس کے فیور میں ہو, اس کے لیے بہتر ہو, یا آلٹرنیٹو کوئی چیز دے دی جاتی ہے, یا قیامت میں اس کا اجر مل جائے. تو دعا بھی قبول ہونی ہے 100% یقینی کا. اب یہاں پہ جو میری ایفرٹ ہے اس میں 100% شیورٹی نہیں, اس لیے دعا بھی یقینی سبب ہے ایک کسی بھی پلاننگ کا. یعنی کہ پلاننگ دو طرح کی, یقینی ہے, یقینی تو یہ یقینی کے انڈر ہے, اس کی سب ہے دعا, کہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ جب پلان کرو دعا بھی مانگو, अब क्वेश्चन सिर्फ ये है कि हदीस पाक में आता है, तिर्मिज़ी की ये रवायत है, इब्न माजा की भी है, कि दुआ के सिवा कोई चीज तकदीर को रद्द नहीं कर सकती और नेकी के सिवा कोई चीज उम्र को नहीं बढ़ा सकती। दुआ के सिवा कोई चीज तकदीर को रद्द नहीं कर सकती और नेकी के सिवा कोई चीज उम्र को नहीं बढ़ा सकती। तो यहाँ एक सदैव में सवाल आता है कि दुआ क्या तकदीर को बदल सकती है? हदीस पाक ने कहा कि दुआ तकदीर को बदल सकती है, क्या यही मीनिंग है? तो यहाँ पे ये बात समझ लें, पहला तो सेल्फ एडिटेड है, क्या मतलब कि जो अल्लाह ताला के इल्म में था ये होना है, वहां अल्लाह ताला के ये भी इल्म में था कि फलां शख्स पे ये जब मुसीबत आएगी तो ये प्लानिंग करेगा, मतलब कि यकीन हो गया, यकीन दोनों, उसने दुआएं भी मांगेगा, उस दुआ पे ये रिजल्ट लेके आए, इतना नहीं पता अल्लाह को। ये नहीं कि अल्लाह ताला से इल्म में खता हो, अल्लाह को पता ना चले, अचानक इंसान ने दुआ मांग ली, ऐसी बात नहीं है। पहले पता, पहले लिखा हुआ। अब इस सिर्फ सिर्फ समझना इस हदीस पाक को कि इसमें क्या कहा गया कि हदीस में कि दुआ तकदीर को बदल देती है। तो तकदीर की दो सब टाइप्स हैं, वो क्या, एक को कहते हैं मुबर्रम, एक को कहते हैं मुअल्लक। मुबर्रम का मतलब वो वाली तकदीर है जिसको हम डिस्कस कर चुके, जो कि चेंज नहीं होगी, जो अल्लाह ने अपने इल्म से लिखी हुई है, वो समझ लें एक बेसिक वही करती है। लेकिन दुआ की सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करने के लिए और अमल की सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करने के लिए इस तरह समझाया गया कि तकदीर बदली जा सकती है। तो उन्होंने लिखा ये तकदीर जो है, ये तकदीर मुअल्लक बदली जाती है, मतलब कि वो इल्म में तो था कि ये दुआ करेगा, लेकिन एक दूसरी तकदीर भी है, और वो तकदीर वो है जो फरिश्तों को के इल्म में है, फरिश्तों के भी एक इल्म है कि फलां शख्स फलां वक्त में ये करना, उनका ऑर्डर है इस वक्त ये करना है, इस वक्त ये करना है, इस वक्त ये करना है। तो जब इंसान दुआ मांगता है अल्लाह से, तो अल्लाह ताला अपने ऑर्डर को बदल देते हैं कि अब ये नहीं, अब ये करो, ये तकदीर मुअल्लक है। लेकिन अल्लाह ताला के इल्म में इनको खता नहीं, अल्लाह के इल्म वही है, वो मुबर्रम है, वो वैसे ही है। फरिश्तों के जो इल्म में है, जो उनको ऑर्डर थे, वो चेंज हो जाते हैं कि अब इसने दुआ मांगी, अब इसके साथ इसको शफा दे दो, अब इसने दुआ मांगी इसको, यानी इस दिन सिरात मुस्तकीम हमें हदायत दे, ये दुआ है, इसने दुआ मांगी तो इसको हदायत दे दे। इल्म में पहले तो कि दुआ मांगेगा सच्चे दिल से, और इसको हमें दूंगा, रिजल्ट भी पहले प्लान है, दुआ भी का होना भी पहले पता है, और ये सारी चीजें पहले पता है। लेकिन इस हदीस पाक से सिर्फ दुआ की सिग्निफिकेंस हाईलाइट होती है कि दुआएं मांगा करो, कि इस पे कई बार फैसले बदल दिए जाते हैं जो कि तकदीर में पहले मेंशन है। तो दुआ मांगा करो, ये दूसरे लफ्जों में हाथ पर छोड़ के ना बैठा करो, एफर्ट्स किया करो, दुनिया में भी और इस जो यकीनी भी है, दुआएं भी और दूसरी दीन के दरकार में वो भी किया करो। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस हाईलाइट होती है। अजी और अब भी तकदीर वैसी है और वो बदलती भी नहीं। और दूसरी हदीस पाक में इब्रानी शरीफ की आयत है, फरमाया तकदीर से डरना कुछ फायदा नहीं देता, और दुआ उस बला के लिए भी फायदा देती है जो नाजिल हो चुकी, और उस बला के लिए भी जो अभी तक नाजिल नहीं हुई, और बेशक ऐसा होता है कि बला नाजिल होती है और दुआ उससे जा मिलती है, तो ये दोनों क्यामत तक आपस में जंग करती रहती हैं, और बला उतरना चाहती है और दुआ उसे रोक देती है। तो पहली चीज जो बता दी कि तकदीर से डरना कुछ फायदा नहीं देता, कि मतलब ये कि वही तकदीर जो तय है वो तय है, यानी पहला कॉन्सेप्ट एज इट इज, लेकिन दुआ ही मांगा करो, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान एफर्ट करे, और उसमें एक दुआ भी है और उसके रिजल्ट आते हैं, जितने इंसान के एफर्ट्स के आते हैं इतने दुआओं के भी रिजल्ट आते हैं। कई बार मुसीबत आती है और दुआ वो कहता है अल्लाह ताला मुझे बचा ले इस मुसीबत मुसाइब से, तो वो आपस में मिल जाती है और मुसीबत एक्चुअली नहीं आई। तो इससे दुआ की सिग्निफिकेंस हाइलाइट होती है। जो असल तकदीर है वो कंसेप्ट वही है जो हमने, इससे उसमें कन्फ्यूजन पैदा ना हो कि वो तकदीर क्या है, कि ये तो तकदीर वो बदली जाती है तो फिर इल्म कैसा हुआ, तो ऐसी बात नहीं है, वो वैसे ही है जो हम डिस्कस कर चुके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेटिंग के अंदर इस तकदीर के कॉन्सेप्ट की क्या इम्पैक्ट है लाइफ में, मार्वेलस इम्पैक्ट, यानी इतने ज्यादा इम्पैक्ट कि फील होता है कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिस पे इंसान हकीकी मुसलमान बन जाए, इतना ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट। इसलिए इसको समझने की कोशिश करना और फिर उससे भी रिलाई न करना, वही बात, यह बात है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये वही है मस्तता, तुम समझा सको समझाओ या समझ सको समझो, लेकिन समझाएगी तो अल्लाह की जात, उसके लिए साथ दुआ जो यकीन से लगो वो भी इंसान करे, अल्लाह मुझे समझा दे और दिल में बात उतार दे, मुझे अपना यकीन है सब दिखा दे, गैबी निजाम जो चल रहा है वो मुझे दिखा दे, उसमें यकीन मेरा ले आ कि मैं प्रैक्टिकली सीन उसके मुताबिक किया था, ये भी साथ दुआ करे, फिर वो उस पर ज़्यादा इंसान मोटिवेटेड फील करेगा जब उसे पता होगा इफेक्ट्स आते क्या हैं ऐसे थिंग्स। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे। वहाँ से दावा अल्हम्दुलिल्लाह اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا الله بختار في دون رحمة مالك يا خالق تمام تعریفیں تمام بڑائیاں تمام عظمتیں تمام خوبیاں اور تمام اچھائیاں تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں یا اللہ پاک، ہم نے جو کچھ کہا جو کچھ سنا ہمیں جو آتا ہے یا اللہ پاک جو ہمارے فہم میں فراست میں ہے یا اللہ پاک تیری عطا ہے، یا اللہ پاک تیرے لامحدود علم میں سے ذرا سا یہ ذرا سی یہ چھینٹے ہیں ذرا سی یہ باتیں ہیں جو ہمیں آپ ہی نے سکھا دی، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں اپنے حقیقی علم میں سے واقف حصہ نصیب فرما، یا اللہ پاک ہمارے دل کے یقین کو اپنے علم کے مطابق ڈھال دے، یا اللہ پاک ہماری سوچ کو اپنے علم کے مطابق ڈھال دے، ہماری زندگی کے ڈیسیجنس کو اپنے علم کے مطابق ڈھال دے، ہمارے یا اللہ پاک زندگی کے ایک عمل کو اپنے علم کے مطابق ڈھال دے، یا اللہ پاک اپنے علم پہ جو قرآن اور سنت کے ذریعے سے واضح کیا گیا یا اللہ پاک اس پہ ہمارا یقین پختہ کر دے، یا اللہ پاک جو کنفیوژنس ہیں ان کو دور کر دے، یا اللہ پاک جو سبب بنے ہوئے ان اس علم پہ آنے سے اس پہ کامل یقین کرنے سے اس کو دور کر دے، اللہ پاک ہم پہ ہماری حقیقت کو کھول دے، یا اللہ پاک ہمارا علم کتنا محدود ہے یہ ہم پہ کھول دے، یا اللہ پاک ہماری صلاحیتیں کتنی محدود ہیں لمیٹڈ ہیں ہمیں ہم پہ یہ کھول دے، یا اللہ پاک ہمیں ہمارے اوپر اپنی حقیقت کی واضح فرما، یا اللہ پاک اور ہماری حقیقت بھی ہم پہ واضح کر دے، یا اللہ پاک جب دونوں حقیقتیں واضح ہوں گی تو تب ہمیں پتہ چلے گا یا اللہ پاک اصل ذات کون سی ہے جس سے محبت کرنی چاہیے، اصل ذات کون سی ہے جس سے تعلق لگانا چاہیے، اصل ذات کون سی ہے جس سے امپریس ہونا چاہیے، اللہ پاک اپنی رحمت سے یہ ہمیں عطا کر دے، اور اس کے جو نتائج ہیں کہ جس کی وجہ سے تیری محبت مل جاتی ہے، تیرا خوف مل جاتا ہے، تیرا توکل مل جاتا ہے، اسے تیری رضا مل جاتی ہے، تیری یا اللہ پاک تسلیم مل جاتی ہے، انسان کو سکون مل جاتا ہے، اللہ پاک وہ ساری نعمتیں بھی ہمیں نصیب فرما دے، یا اللہ پاک ہمیں بھٹکتے رہنے سے محفوظ فرما، کنفیوز رہنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک ہم نے آپ نے رحمت کا معاملہ کیا ہمیں دنیاوی علم دیا، یا اللہ پاک اب رحمت کا معاملہ فرما دے ہمیں اپنے، یا اللہ پاک اپنی ذات کا علم بھی دے دے ہمیں، یا اللہ پاک شک و شبہات سے نکال دے، یا اللہ پاک ہمیں یا اللہ پاک ساری عمر صرف باتیں سننے اور کہنے والا نہ رہنے دے بلکہ یا اللہ پاک عملی میدان میں بھی ہمیں اتار دے، یا اللہ پاک ہم بچپن سے یا اللہ پاک یہ باتیں سنتے آ رہے ہیں لیکن زندگی کو دیکھتے ہیں تو یا اللہ پاک اس کی جھلک بھی نہیں ملتی، اللہ پاک رحمت کا معاملہ فرما دے، موت نہ جانے کب آ جائے، زندگی کے لمحے کب ختم ہو جائے، تیرا سامنا نہ جانے کب ہو جائے، اے اللہ پاک رحمت کا معاملہ فرما دے، ہمارے روح کو سیدھا کر دے، ہمارے گندی اور بری عادات کو صحیح کر دے، اللہ پاک اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، تیرے حوالے کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے، ہم عاجز آ چکے ہیں اپنے نفس سے، یا اللہ گناہ کو کر کر کے تنگ آ چکے ہیں، یا اللہ پاک چاہتے ہیں دردوں سے نکلے کوئی یا اللہ پاک نکلنے کی صورت نہیں نظر آتی، اللہ پاک رحمت کا معاملہ فرما، تو ہی ہمارا سہارا ہے، ہم تیری طرف ہاتھ بلند کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں دردوں سے نکال لے، یا اللہ پاک رحم کا معاملہ فرما لے، یا اللہ پاک آج تک جو بھی نیک بنا جو بھی یا اللہ پاک نیکی تقویٰ پہ آیا تیری رحمت سے آیا، یا اللہ پاک تو نے ہی اسے اس کو سہارا دیا نیکی پہ چلنے پہ، اللہ پاک ہم بھی تو تیرے انسان ہیں، ہم بھی تو تیرا کلمہ اور نام لینے والے ہیں، یا اللہ پاک ہم پہ بھی رحمت کی نظر کر دے، یا اللہ پاک ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے، یا اللہ یقین سے کہتے ہیں برباد ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یا اللہ پاک ہمارا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا، ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، ہم تو یا اللہ پاک نسلیاں منسیہ ہو جائیں گے، ہم بالکل بھلا دیے جائیں گے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں तबाह हो बर्बाद होने से बचा ले। या अल्लाह पाक, इसका बच्चा नहीं जानता कि बिजली का क्या नुकसान है और उसकी तरह लपकता है। या अल्लाह पाक, इसी तरह हमारा भी हाल है कि हमें नहीं पता गुनाहों के क्या नुकसान हैं, तो उससे दूर जाने के क्या नुकसान हैं। अल्लाह पाक ये वाजे कर दे हम पे कि क्या नुकसान होता है तुझसे दूर जाने का, क्या बर्बाद हो जाता है इंसान जब तुझसे दूर जाता है। अल्लाह पाक हम पे हकी हकायक को वाजे कर दे। या अल्लाह, मौत एक बड़ी हकीकत है जो हम करीब आने वाली है, हम उससे आंखें बंद किए हुए हैं, उसका सामना करने से या अल्लाह पाक हमने कोई तैयारी नहीं की। या अल्लाह पाक उस हकीकत को भी हमारे सामने खोल दे, हमें गफलत से निकाल दे, हमें या अल्लाह अपनी रहमत से, हमें अपनी रहमत से या अल्लाह पाक सच्चा पक्का मोमिन बना जो हकीकतों को जानने वाला होता है। या अल्लाह पाक जो गुनाह हो चुके अपनी रहमत से माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक गुनाह करने के इरादे से भी महफूज फरमा, माहौल से भी महफूज फरमा, ऐसे दोस्तों से भी महफूज फरमा जो गुनाह की तरफ लेके जाते हैं, ऐसी कंपनी से भी महफूज फरमा जो अल्लाह पाक जो गुनाह में फंसा देती है। या अल्लाह पाक हर तरह से हमारी भी हिफाजत फरमा, हमारी औलाद की भी हिफाजत फरमा, बस क़यामत तक आने वाली नस्लों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक जो लोग मुश्किलों परेशानियों गमों में मुबतला हैं, या अल्लाह पाक अपनी रहमत से उनको मुश्किलों से निकाल दे। या अल्लाह, वो जान की तरफ से परेशान है, या माल की तरफ से, या औलाद की तरफ से घर बार के झगड़े हैं, या अल्लाह पाक या औलाद ना होने का गम है, या अल्लाह पाक जो भी परेशानी और गम है अपनी रहमत से सबको सुलझा दे, सबको हल कर दे, आफियत वाली जिंदगी सबको नसीब फरमा। या अल्लाह पाक आफियत के साथ ईमान के साथ मौत नसीब फरमा, आफियत ईमान के साथ हशर का मामला फरमा, और या अल्लाह पाक आफियत के साथ हमें जन्नत फिरदौस में बिला इस्तेकाक और बिला इजाज़ पहुँचा दे। या अल्लाह पाक जो लोग फौत हो चुके अपनी रहमत से सबकी बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद कर दे, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। या अल्लाह पाक अपनी रहमत उन पे इशावर कर दे। या अल्लाह पाक तीनों हरम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक जमी इस्लामी ममालिक की हिफाजत फरमा, खसूसन पाकिस्तान की अंदरूनी बैरूनी खदशात से महफूज फरमा दे। या अल्लाह पाक मुसलमान जहाँ जहाँ कमज़ोर हैं, जुल्म का शिकार हैं, या अल्लाह पाक अपनी रहमत से या अल्लाह पाक उनके दिलों को सुकून दे। या अल्लाह पाक उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत कर। या अल्लाह पाक महज अपने लुत्फ करम से या अल्लाह पाक उनकी गैबी मदद फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारे पास दुआएं हैं जो हम उनको पहुंचा सकते हैं, अपनी रहमत से या अल्लाह पाक इन दुआओं को कबूल फरमा दे। या अल्लाह पाक इस बैठने को सुनने को कबूल करके हमें अपनी तकदीर का सिखा दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्ना कंता समीउल अलीम व तुब अलैना इन्ना कंता तव्वाबुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहाबिही अजमईन व बि रहमतिक या अरहम राहिमीन।
Thank you.